نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے دور قرآن 2021 کے پارہ نمبر 3 کا آج ہم آغاز بھی کریں گے اور اختتام بھی ہوگا, اور اس سوچ اور اس دعا کے ساتھ کہ اے مالک تو ہمیں بہترین طریقے سے اس پارے کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. اس وقت اپنے دل کو ایک ایسے خالی برتن کی طرح محسوس کیجئے کہ جس کے اندر رحمت کا, برکت کا, خوشی کا, سکون کا, اطمینان کا پانی ڈلنے والا ہے. ہم سب زمزم کے بارے میں بہت کانشیس ہوتے ہیں نا, دوپٹہ سر پہ لے کر پینا چاہتے ہیں اور منہ بھی قبلے کی طرف کرتے ہیں. بس جس رب نے وہ زمزم دیا اسی نے یہ قرآن دیا. یہ چھوٹے چھوٹے تبرکات جو زندگی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کس طریقے سے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بنا دی ہیں, تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے اس خزانے جس کو پارہ نمبر 3 اور جس کے ساتھ تل کا رسول کا نام ہے, اس میں آج میرے آپ کے لیے کیا ہے. اور یاد رکھیے پرانے پاک میں تو خزانے ہیں, رحمتیں ہیں, لیکن آپ اور میں اس میں سے کتنا لے سکتے ہیں یہ اب میرے اور آپ کے اپنے اختیار کی بات ہے. کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بہترین فائدہ مند کروا سکیں, تو تل کر رسول رسولوں کے آغاز کے ساتھ نام کے ساتھ سے پارا ہے. پچھلے پارے کے ساتھ رب ذرا سا محسوس کیجئے آخری آیت کیا تھی دوسرے پارے کی. تل کا آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین, اور یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کے پاس حق کے ساتھ پڑھتے ہیں یا حق کے ساتھ ان کو نازل کرتے ہیں, اور آپ بے شک مرسلین میں سے ہیں. گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرسلین میں ثابت کیا گیا تھا, اور اس بارے میں تل کر رسول, اگر رکوے بغیر اس کو دیکھ کے کہہ دوں, اگر اس کو اپنے پاس لے کر میں صرف اس سوچ کے ساتھ بول دوں کہ یہ رسولوں کے ساتھ آپ کے میرے تعلق کو محسوس کرنے کا پارا بھی ہے, رسولوں کے مشن کی بات بھی ہے. آج امت مسلمہ نے کس طریقے سے رسولوں کے مشن کو بھول کر صرف ان کی یادگاریں اور ان کی باتیں کرنا شروع کر دی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں نے اپنی زندگی اس طرح کی گزار کر دکھائی کہ جس کے بعد کوئی سوال سوال نہیں رہتا, ہر سوال کا جواب آپ کو مجھے مل جاتا ہے. تو تل کر رسول, انبیاء کرام لوگوں کو کیسے ہدایت کی طرف بلاتے رہے اور ان کے قلوب کی اصلاح کرتے رہے. ہمارا تھیم ہے استفاد ہدایت کے اعتبار سے دلوں کی قسمیں. انبیاء کرام انسانیت کے محسن تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا. آج اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چنتا ہے جو اپنے دلوں کی صفائی کرتے ہوئے اللہ کے نبیوں کے اس مشن پہ چل پڑتے ہیں. دنیا میں تطہیر اور پاکی کے لیے کئی مختلف چیزیں جیسے کلینزر, سینیٹائزر اور اسی طرح کی کچھ چیزیں, جو کلیننگ اور جو صفائی قرآن پڑھنے کے بعد دل کی ہوتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتی. تو لہٰذا اس بارے میں ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے انبیاء کرام کا تذکرہ ہے اس بارے میں. میں نے پورے بارے میں گنے تو 15 انبیاء کرام کا تذکرہ مجھے ملا. عیسیٰ, ابراہیم, عزیر, آدم, نوح, آل ابراہیم, پھر آل عمران, پھر امرات عمران, پھر مریم, زکریہ, یحییٰ, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, اور پھر اسبات یعقوب علیہ السلام. تو آپ خود ہی سوچ لیجئے کتنا پروفاؤنڈ پارا ہوگا. جہاں اتنے ستارے جمع ہو جائیں وہاں روشنی کی باتیں نہ ہوں گی. آپ کو اس پارے کے اندر ایک خزانہ ملنے والا ہے. वो बड़ी बड़ी आयात के जिसको आयतुल कुर्सी भी कहते हैं और आयते दैन भी कहते हैं, तो इसमें आपको मुझे एक खूबसूरत सा मिजाज दिखने वाला है। पिछले पारे की तरह इसका भी मौजू अल-क़ल्बुल बाहिसु अनिल हिदाया, हिदायत का तलबगार दिल, ये है हमारा थीम। क्योंकि आपके बारे में मेरा गुमान गालिब है कि आप सब हिदायत की तलब में यहाँ बैठी हैं और आप सुन रहे हैं इसको हिदायत पाने के लिए, क्योंकि यही है वो बेहतरीन तोहफा जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि गाइडेंस इज अ गिफ्ट। जितना ज्यादा आप इसकी तलब रखेंगे अल्लाह ताला आपको उतना ज्यादा देगा। पारे के अंदर आपको सूरत अल बकरा का आखिरी हिस्सा और इसी तरह से सूरत आल इमरान का इब्तदाई हिस्सा मिलेगा, दोनों ही बेहतरीन सूरह। पारे का मरकजी ख्याल क्या है? आल इमरान आयत 7, हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातु मुहकमातुन हुन्न उम्मुल किताबी व उखरु मुतशाबिहात फ़अम्मल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिगा अल फितनति व इब्तिगा अतावीलिही व मा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ। वही अल्लाह ताला है जिसने आप पर किताब उतारी जिसमें मजबूत और वाज़े आयात हैं जो असल किताब है और बास मुतशाबे आयात भी हैं, बस जिनके दिलों में कजी है वो तो इसकी मुतशाबे आयात के पीछे लग जाते हैं। फितने की तलब, इस पे जरा सा गौर कीजिएगा, इस जुमले को मैं इसलिए दोबारा बोल रही हूँ, फितने की तलब और इनकी मुराद की जुस्तजू के लिए, यानी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें इसमें से निकालने लाने या फिर अपने ही किसी मकसद को सच्चा साबित करने के लिए, अपने ही किसी पॉइंट ऑफ व्यू को कुरान और सुन्नत से साबित करने के लिए कुछ लोग इस कुरान को एज अ टूल यूज करते हैं, हालांकि इनकी हकीकी मुराद को सिवाय अल्लाह ताला के कोई और नहीं जानता। और पुख्ता और मजबूत इल्म वाले यही कहते हैं, हम तो इन पर ईमान ला चुके हैं, ये हमारे रब की तरफ से है और ये सारी आयात हमारे रब की तरफ से हैं और नसीहत तो सिर्फ अकलमंद हासिल करते हैं। तो गोया के इस आयत में आपको अल कल्बुल जाय टेढ़े दिल की बातें मिलेंगी। हमने पहले अपने कोर्सेस में जो कि रमजान से पहले किया, खासतौर पे अनवाल कुलूब, तो उसमें एक दिल की कैफियत देखी गई थी जिसको अल कल्बुल जाय कहते हैं, टेढ़ा दिल, टेढ़ पैदा करने वाला दिल, ऐसा दिल के जिसको सीधी बात भी उल्टी लगे। इस बारे में कुछ चीजें हमें इससे मुतल्लिक दिखेंगी और इस आयत को पढ़ते हुए हमें यकीन आ गया कि मेरा आपका इस किताब से फायदा उठाना कब मुमकिन है, जब हम इस आयत के इस हिस्से पे बात कर ले कि आमन्ना बिही कुल्लु मिन इंदी रब्बिना। इस आयत का ये हिस्सा अजबर याद कर लीजिए कि पूरे का पूरा कुरान हमारे रब की तरफ से और हम उस पर ईमान लाते हैं, जो हमारे अमल की बात होगी उसको ले लेंगे और हर वो बात जिससे कोई शुबा पड़े या जिसके बारे में बात करने से कोई अमली तौर पे बात ना मिले तो हम उसको पीछे कर देंगे। पारे की दुआ, आप हैरत अंगेज हद तक आज इस पारे को हिदायत और दिल के साथ जोड़ते हुए महसूस करेंगे। पूरे पारे पे यही दुआ मुहित है जो सूरत आल इमरान की आयत नंबर 8 में है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। क्या है उनकी दुआ पीछे वाली आयत के आगे वाले ही ये जुमला, रासिखून फिल इल्म, इल्म में पुख्तगी हासिल करने के बाद जो दिल से दुआ निकलती है वो क्या है, कह रब हमारे, ऐ परवरदिगार, जब के तू हमें सीधी राह पर लगा चुका है तो फिर कहीं हमारे दिलों को कजी में मुब्तला न करना। अल्लाहु अकबर, हमें अपने खजाने फैज से रहमत अता कर कि तू ही फैयाज हकीकी है। मैं इस आयत के ऊपर जितना गौर करती हूँ ना तो मुझे उतना ही अपने बारे में फिक्र लग जाती है। अमूमन लोगों के पास जब इल्म थोड़ा सा आने लगता है ना तो हमारा अमूमन मामला क्या होता है, कोई हमसा हो तो सामने आए, अपने कंधे थपथपाते हैं और लोगों की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं कि हमें ये कुछ कह क्यों नहीं रहे। लोग कहें हमारे बारे में, जन्नतियों को देखना है तो इनको देखिए, सबसे ज्यादा किसी को दुनिया में रहते हुए अल्लाह वाला देखना है तो इनको देखे, यानी अमूमन देखिए बहुत बड़ी बात करने लगी हूँ। और वो लोग कान बंद कर लें जो अभी हिदायत की पहली सीढ़ी के पास खड़े घबरा रहे हैं कि चढ़ूं कि ना चढ़ूं। ये उन लोगों की बात नहीं है, ये उन लोगों की बात है कि जिनको अल्लाह सुबहान ताला ने हकीकत में अल्लाह सुबहान ताला ने जिन लोगों को हिदायत की दूसरी तीसरी नहीं कोई अगली चौथी पांचवी सीढ़ी पे भी डाल दिया है, और वो फिर अपने बारे में बहुत ही खुशगुमान हो जाते हैं। लिखिए ये दुआ उन लोगों को और ज्यादा मांगनी है जो हिदायत पा चुके या हिदायत के करीब है। पहले पारे में जो आपने पहले पारे में हिदायत की बात की थी, जो आपने पहले पारे में हिदायत के तीन मरहले थे ना, तो आप में से मेरे में से हर एक उसके बारे में सोचे। सबको छोड़ दीजिए, लोग आपको क्या कहते हैं, किस नाम से पुकारते हैं, छोड़ दीजिए, साहब के लाख के फुला 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 पीछे कर दीजिए इसको अपने जहन से। आपको दूसरे क्या समझते हैं उसको छोड़ दीजिए। और मैं यहाँ दो किस्म के लोगों से मुखातिब हूँ, आप पूरी तवज्जो रखिए। एक बिल्कुल ऐसा शख्स जिसके बारे में लोग कह देते बेहिदायता नऊज़ु बिल्ला, और फिर उसके साथ कुछ और टाइटल भी लग जाते हैं। लेकिन एक वो है जिनको लोग आलिम फाजिल मुत्तकी परहेजगार हाफिज कुरान आलिमा और इस तरह की बातें करते हैं। आप अपना व्यवहार खुद चेक कीजिए, आप पहले स्टेज पे हैं तो फिर आप इतनी फिक्र ना कीजिए, क्योंकि अभी हिदायत आई कोई नहीं तो जाने का डर क्या। देखिए जब आपको अल्लाह औलाद नहीं देता तो आपको उसकी जिंदगी की क्या फिक्र होनी चाहिए, कुछ भी तो नहीं है ही नहीं, जब है तो नहीं। जब औलाद मिल जाती है तो हर लम्हे माँ बाप का दिल उसके साथ पड़ा रहता है, इसको जुकाम हो गया, इसको नजला हो गया, फिर फिक्र होती है अल्लाह इसको अब कुछ हो ना जाए। आप क्या सोना है ही कोई नहीं तो क्या फिक्र है, लेकिन जब सोना आ जाता है तो फिर चोरी का डर चिकारी का डर। फिर आप कभी कहते हैं कि मैं कुछ लेके लॉकर ले लूं, वहां रख दूं, यहां कर दूं, हाँ इस तरह की बातें होने लगती हैं। मेरी इन दो मिसालों पे फोकस कीजिए, जरा सा सोचिए, इन सारी चीजों को अपने दिमाग में लीजिए और फिर इस दुआ पे फोकस कीजिए। आप में से बहुत सारों की नजरें अभी भी इस दुआ पे नहीं है, फिर अब बना ला तो खुलू बना बाना अल्लाह। मैंने बड़ी मेहनत से हिदायत की ये दौलत जमा की है, कतरा कतरा करके मैंने दरिया को जमा किया है। वो कहते ना कि खूने जिगर देकर या दिल का खून देकर मैंने ये पौधा लगाया है कि जिसने मेरे प्यार पुराने पापी मन को तेरा बनाया है, तेरा बंदा बनाया, या कना बुदू या कनस्तीन के सबक को मैंने पढ़ा, अब मुझे पीछे न लाना। आज की एक्टिविटी अपने लिए रखिए, अकेले में बैठकर वही जो आपके 5 से 10 मिनट अल्लाह ताला के साथ बातें करने हैं ना, उसमें बैठकर नंबर एक अपने अंदर डूबिए, इस तफ्तह कल्बक वलो अफतूक, इस पे अमल कीजिए। ये हदीस का एक टुकड़ा है, जब कोई ऐसी बात कोई पूछता आकर अल्लाह के नबी से जिसका जवाब बड़ा ही सादा सा होता, आपको जब आप सिर्फ इस दुआ के टेक्स्ट के ऊपर फोकस कीजिए इस वक्त, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। आप जरा से इसके ऊपर अपने दिमाग को खोल कर देखें, आप हैरान हो जाएंगे। आपकी मेरी कीमती मदा हिदायत, सबसे कीमती दौलत हिदायत, हैंडल विद केयर, फ्रेजल है। गाड़ी में चलते चलती गाड़ी को अगर आप जरा सा केयरलेसली डील करें ना, स्टेयरिंग लूज कर दें तो गाड़ी खड्डे में गिर जाएगी, तेज गाड़ी को हैंड ब्रेक लगाएं तो गाड़ी उलट जाएगी। बस हिदायत बहुत जल्दी रूठ जाती है। हम दूसरों की नजरों में आलिम होते हैं, आलिमात होती हैं, लेकिन हम हिदायत की पटरी से उतर चुके होते हैं। कब? जब हम तन्हाई में कोई गलत काम कर लेते हैं, कोई गलत चीज देख लेते हैं, कुछ गलत सुनते हैं, और कुछ नहीं तो हम अपनी मासी के साथ बदतमीजी से बात कर दें, अपने छोटे के साथ चीख के बात करें, हम हिदायत से उतर कर हमारा दिल अलकलबुल जायक हो चुका होता है। मसला ये है कि हम लोगों की नजरों से जन्नत पे अपना मुकाम पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं मैं किस जन्नत में हूँ। तो अपने दिल से पूछिए, सूरत क़यामत में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि बलिल इंसान वाला नफ्सिही बसीरा वलो अल्का माजीरा, बल्कि इंसान अपने बारे में खूब जानता है, चाहे दूसरों के सामने वो कितने ही उजर क्यों ना पेश करे। तो आपने इस दुआ को तन्हाई में पढ़ते हुए अपने दिल की कैफियत महसूस करनी है। और मुझे इस वक्त रश कर रहे उन लोगों पर जिनको भी हिदायत को नहीं मिली लेकिन हिदायत की तलब जाग चुकी है, फिर क्या हुआ अगर गलत कामों में है? देखिए शिर्क और कुफर से बड़ा गुना कोई नहीं है दुनिया में, ये अलग बात है। हमें उन लोगों के ऊपर गुस्सा नहीं आता, कोई थोड़ा सा किसी फिल्म की दुनिया में चला गया, कोई गाने बजाने के साथ लग गया, किसी के साथ जिंदगी में जरा सा कोई ऐसा सानहा हो गया, कोई औरत है वो गलत कामों में पहुंच गई, हम ऐसे फिर उसके ऊपर उंगलियां उठाते हैं। आज के बाद नहीं उठानी, उंगली उठानी है तो अपनी तरफ उठाइए। क्यों? इसलिए कि जब आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं ना तो फिर चार उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। अपनी अपनी तरफ उंगली उठाइए, किसी को देखकर मत कहिए ये शराबी है, ये कबाबी है, ये फलां कार है, तो ये फलां कार है जो आप कहते सुनते खुद ही रखे। कोई फिल्म में काम करता है तो इसका ये तो नहीं मतलब कि वो बुरा इंसान है, हालात बुरे हो सकते हैं, उस तक हिदायत की रोशनी आपने दी कब? हर एक तो किसी आलिम फाजिल घराने में नहीं पैदा होता, फिर क्या आप क्यों इसकी इतनी फिक्र करते हैं? तो बहरहाल बात इशारे दे दे मकसूद थे, खुलासा दे देती हूँ इतनी बात का कि अगर आप हिदायत से दूर अभी सीढ़ी के पास खड़े कांप रहे हैं तो बिस्मिल्लाह करके आ जाइए, डोंट वरी। लोग आपको क्या कहते समझते हैं कान बंद कर लीजिए, क्योंकि आपके दिल में हिदायत की तलब जाग चुकी है। और इसके बाद अगर आप हिदायत वाले हैं बल्कि लोग तब आपके नाम लेके कहते हैं कि आप तो माशाल्लाह हैं ही बड़े अच्छे, तो ये तो आपके लिए, मैं अपने लिए कह देती हूँ, मैं आपको पढ़ाने बैठी हूँ तो ऐसे तो नहीं बैठी ना, ये तो मेरे लिए कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादे इज़ हदैतना। आज भी इतने फेमस नाम है दुनिया में, हमारे अपने इंडो पाक कल्चर में भी और बाकी लैंग्वेजेस में, इतने तकवा के एतबार से, इतने इल्मी शख्सियात के नाम से वो मारूफ थे अपने इब्तदाई दौर में, और आज कोई एक गलती लगी अकीदा ही बदल गया। याद रखिए इल्म होता है तो बंदा आलिम बनता है और आलिम ही बिगड़ता है। और दल्लतुल आलिम, एक आलिम की गलती उसका फिसलना आलम की गलती होता है, आलिम फिसलता है तो वो पूरे जहान को जो उसके इर्द गिर्द होता है उसको साथ लेकर जाता है। तो अल्लाह ताला हमें हिदायत पे रखे। आगे चलते हैं सूरत अल बकरा, इस पारे में 253 से लेके 286 तक आखिरी हिस्सा इस सूरत का हम पढ़ेंगे। इस पारे में हमारे पास जो दिल और दिल से मुतल्लिकात हैं जरा सा उनको गो थ्रू कर लेते हैं। आयत 260 सूरत अल बकरा, अल कल्बुल मुतमईन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल। वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुहयिल मौता قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي। जब इब्राहिम अलैहि सलाम ने कहा था कि मेरे मालिक मुझे दिखा दे तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है, फरमाया क्या तू ईमान नहीं रखता? इसने अर्ज किया ईमान तो रखता हूँ मगर दिल का इत्मीनान दरकार है। याद रखिए कि एक वो शख्स होता है जिसने खुद चलना होता है किसी रास्ते पे, और दूसरा वो होता है जिसने दूसरों को चलाना होता है। अम्बिया कराम को अल्लाह ताला ने ये मिशन दिया, ये तीसरे पारे का मेन थीम है, पूरा पारा आप खोल कर देख लीजिए अम्बिया के मिशन को वाज़े करता है। तो अल्लाह ताला उनको यकीन और ईमान की वो भट्टी बनाना चाहता है कि जो अम्बिया कराम के करीब आए उसका भी दिल पिघल जाए। तो लिहाजा कभी कभी उनको अनयूजल खिलाफ तबा चीजें दिखाता है, जैसे नबी सल्लम का मेराज का सफर, आप सुनी हुई बात को देखी हुई बात से कभी भी करीब नहीं समझ सकते। तो ये वाक्या कुछ ऐसा ही वाक्या है। फिर उसके बाद सूरत अल बकरा 283 अल कल्बुल आसिम वमन यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन कल्बुहु, जो शहादत छुपाता है इसका दिल गुनाह में आलूदा है। तो कभी सच्ची गवाही ना छुपाइए, सिर्फ अपने पसंद के इंसान को सच्चा करने के लिए आप दूसरी तरफ की बात को या छुपा दें या इसकी गलत साइड ले लें, तो ये आपके लिए बहुत ही घाटे का और नुकसान का सौदा बन सकता है। फिर इसके बाद अल कल्बुल ज़ाइख, आल इमरान 7, फ़अम्मा लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिग़ा अल-फितना अल-फितनति वब्तिग़ा तअवीलिही। जिन लोगों के दिल टेढ़े हैं, यानी जिन लोगों के दिलों में टेढ़पन आ चुकी, वो फितने की तलाश में हमेशा मुतशाबिहात ही के पीछे रहते हैं और इनको मानी पहनाने की कोशिश करते हैं। तो इस पे हमने बात कर ली कि हमने अल्लाह ताला से इस बात से पनाह मांगनी है कि हमारे दिल दिमाग में कभी भी कोई ऐसा नुक्ता आ जाए कि जो हमें हिदायत की राह से उतार कर गुमराही पर ले चले। और उसके बाद फिर आयत 8 जो कि हमारी दुआ भी है, इसमें भी अल कल्बुल ज़ाइख का तज़किरा है। इस नाम को पूरे कुरान पाक में अगर आप ढूंढें, तीन मुकामात हैं कुरान पाक के जहां टेढ़े दिलों का बराह रास्त फिक्र है, और इनडायरेक्टली तो बहुत सारी आयतें वो साथ साथ आपको मेंशन करते रहेंगे। एक तो सूरत आल इमरान 7 जो भी हमारे सामने है, फिर आल इमरान 8 वो भी इधर है। इसीलिए इस पारे के साथ इसको चूज किया गया कि इस एक पारे में दो दफा टेढ़े दिलों की बात है। सच बताइए, आज तक के दौरे कुरान में कभी ये सोचा था आपने, देखा था कभी आपने? नहीं देखा ना। तो हर साल एक नए टॉपिक के साथ चलने की वजह से फिर हमें क्या समझ आता है, हमें ये समझ आने लगता है कि हम हर चीज कुरान पाक में एक दफा पढ़कर नहीं ले सकते। कुरान पाक की मिसाल एक कुएं की है, जितना उसकी गहराइयों में जाते जाएंगे मीठे से मीठा पानी मिलता जाएगा। इसी तरह कल्बुल ज़ाइख का तस्करा सूरह सफ की आयत नंबर 5 में है, जब वहां पहुंचेंगे तो चलेंगे तो देखेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट थिंग पारा 3 में हिदायत से मुतल्लिक आयात का खुलासा। अल्लाह सुभान व तआला ने इस पारे में हिदायत का तस्करा जहां जहां किया, सूरत अल बकरा की आयत 264 में हिदायत का जिक्र है, और वो यही है कि अल्लाह सुभान व तआला हिदायत नहीं देता जालिम कौम को। यानी अगर आप देखें तो आपको इधर इतना कुछ मिलने वाला है कि आपको फिक्र लग जाती है, क्योंकि यहाँ अल्लाह सुभान व तआला ने माली मामलात की बात की है। सूरत बकरा का आखिरी हिस्सा शुरू होता है, माल के खर्च की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं, और इसी में आखिरी आयत भी आएगी जो नज़ूल के एतबार से है, आयतुल कुर्सी भी आएगी। तो इन सब के अंदर हिदायत पे जमना बड़ा मुश्किल होता है। हम सब कुछ कर लेते हैं लेकिन किसी एक माल में नहीं होते। तो इसी तरह से आयत 258 हिदायत के रास्ते की रुकावटों का तज़किरा है, और वो शक और तकबर है। फिर इसी तरह आयत नंबर 2 में अल्लाह हिदायत नहीं देता, यानी आयत 258 में अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता, और अगली आयत 264 में आता है काफिरों को हिदायत नहीं देता। तो तकाबुल में मिलेगा आपको कि किन को हिदायत नहीं मिलती। फिर इसी तरह बकरा 272 में आएगा कि हिदायत तो अल्लाह ही के हाथ में। आले इमरान 4 में आएगा कि तौरात भी अपने वक्त पर हिदायत की किताब थी। आयत 8 में देखेंगे कि हिदायत के चले जाने के बाद, यानी हिदायत के चले जाने का अंदेशा एक दुआ की सूरत में, और आले इमरान 40 उसके आगे झुकना ही हिदायत पर होने की दलील है। और फिर सबसे बड़ी खतरनाक चीज जो उम्मत में आज आपको बहुत आम दिखती है, आले इमरान 73, फिरका वारियत की दावत का जवाब कि हिदायत तो अल्लाह ही के रास्ते पर चलने से मिलेगी। और फिर आयत 86 आल इमरान, अल्लाह ताला जालिमों को हिदायत नहीं देता। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें हिदायत से फायदा उठाने वाला बना दे। एक और फ्लो चार्ट की रोशनी में देख लीजिए सूरत अल बकरा के आखिरी हिस्से के मजामीन क्या है, यानी 253 से 286 तक। पहला टॉपिक इसमें जो हमें एक मैसेज अपने लिए मिलेगा वो क्या है, शख्सियत परस्ती नहीं करनी, शख्सियत में खोने वाले असल मेन स्ट्रीम से हट जाते हैं, हिदायत की बजाय कुछ नाम, कुछ गिरोह, कुछ मसलक और कुछ बुजुर्ग अच्छे लगने लगते हैं। फिर इसी तरह से आयत 254 तरतीब नजूल के एतबार से हम देखते हैं कि आखिरी आयत है, बल्कि ये 254 नहीं है, इसको थोड़ा सा ये मिस प्रिंट है। आपको इंशाल्लाह मैं आगे जहां वो आयत आएगी तो बताऊंगी। आप इधर ये कर लीजिए कि इस हिस्से में आखिरी आयत मिलेगी आपको तरतीब नजूल के इतबार से, फिर आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला का मुकाम जानेंगे, उसके फौरन बाद और उससे एक आयत पहले माल के खर्च करने की बात है। तो यहाँ इसका रफ्त क्या है कि आयतुल कुर्सी में अल्लाह के नाम और तकरीबन अल्लाह ताला की 18 to 20, 21 तरीके से अल्लाह ताला का तज़किरा है, यानी अगर जमायर भी जमा कर लें तो 18 से लेकर 21 बार आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला का तज़किरा है किसी भी सूरत में। तो फिर जब उसका मुकाम पता लग जाता है तो अल्लाह की रहमत से फिर उसकी बात मानना भी आसान हो जाता है। फिर कुरान और सुन्नत को थामने से हिदायत की रास्ते की रुकावटों से बचाव भी आसान हो जाता है। फिर माल खर्च करने की मुख्तलिफ सूरतें और माल खर्च करने की हिकमत, और फिर सूरत के आखिर में अर्श के खजाने, आखिरी दुआयात और खताओं की माफी की दुआ। अल्लाह ताला हमें इससे फायदा उठाने वाला बनाए। चलिए अब हम चलेंगे टेक्स्ट के एतबार से तर्जमे को साथ लेते हुए पारे के आगाज से, और इसके साथ ही साथ फिर अपने दिल को चेक करेंगे कि क्या इस वक्त कोई और चीज मेरे दिल दिमाग पर तो नहीं। तो अल्लाह ताला से दुआ करके हम इसको शुरू करेंगे। आप भी 3 सेकंड तक अपने आप को रिलैक्स कीजिए। औसु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफा बादहुम दरजात। देखिए आयत 253 बहुत ही खूबसूरत रहम आयता पढ़ने लगे, तवज्जो रखिएगा, इसमें भी बात हिदायत पे है। टॉपिक है इसका अल्लाह ताला का कानून में हिदायत। ये रसूल हैं जिनमें से हमने बास को बास पर फजीलत दी है, इनमें से बास वो हैं जिनसे अल्लाह ताला ने बातचीत की है और बास के दर्जे बुलंद किए हैं, और हमने ईसा इब्ने मरियम को मौजदात अता फरमाए और रूहुल कुदस से इनकी तायीद की। अगर अल्लाह ताला चाहता तो इनके बास वाले अपने पास दलीलें आ जाने के बाद हरगिज आपस में लड़ाई भड़ाई न करते, लेकिन इन लोगों ने इख्तलाफ किया। इनमें से बास तो मोमिन हुए और बास काफिर, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो वो आपस में ना लड़ते, लेकिन अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है। इस आयत में आपको जो मुझे बात में बता दी गई वो क्या है, वलौ शाह अल्लाह, लिखिएगा जरा सा वलौ शाह अल्लाह, ये है अल्लाह ताला का कानून हिदायत। कुरान पाक में अल्लाह सुबहान ताला ने अपना हिदायत का कानून सूरत शम्स की आयत 8 में बताया, फल हमहा फुजूरहा व तकवाहा। क्या है इसका मानी कि अल्लाह ताला ने हर बंदे के दिल में नेकी और बदी का शऊर पैदा कर दिया। फिर सूरत दाहर की आयत नंबर 2 और 3 में अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि मैंने तुम्हें छूट दिए, इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, चाहो तो शुक्रगुजार बन जाओ, चाहो तो न शुक्रे बन जाओ। और इसी तरह से सूरत शुरा की आयत नंबर 13 यानी 13 से अल्लाह ने पैगाम दिया कि जो हिदायत की तलब में लगेगा उसको जरूर हिदायत मिलेगी। और सूरत सफ की आयत 5 से पता चलता है कि जो खुद टेढ़ा होना चाहेगा अल्लाह ताला उसे टेढ़ा कर देगा। कुरान पाक में कभी हिदायत का एक रुख बयान किया जाता है, कभी दूसरा। इसीलिए फिर हिदायत के मौजू को समझने के लिए आहिस्ता आहिस्ता आगे चलना पड़ेगा। पूरा कुरान पढ़ते पढ़ते आपको खुद पता चल जाएगा कि अल्लाह किसको हिदायत देता, किसको नहीं, क्यों देता और कब देता। बस एक जुमला करके आगे ले चलती हैं, और वो क्या कि इस दुनिया में अल्लाह ने इंसान को इख्तियार की आजादी दी, इसके बरक्स दूसरी मखलूकात को इख्तियार की आजादी नहीं दी। आज मैं और आप बिल्कुल आजाद हैं। इस वक्त हम सो जाएं घर जाकर, बैठ जाएं, हम फिल्म देखें, हम गाना सुनें, हम उठकर किसी को थप्पड़ मार दें, किसी पे जुल्म कर दें, किसी पे ज्यादती कर दें, पूरी आजादी है। लेकिन आखिरत में फिर इख्तियार खत्म हो चुका होगा। आज जो करेंगे कल हमारी आखिरत पे उसका बड़ा गहरा असर होगा। आगे है आयत 254, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम। इसका टॉपिक लिखिए इससे पहले कि वो दिन आ जाए। यहाँ बाज़ाब्ता तौर पे माल के खर्च करने की दावत है। क्या, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, जो हमने तुम्हें दे रखा है इसमें से खर्च करते रहो। इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें ना तिजारत है ना दोस्ती और ना शिफात और काफिर ही है। क्या ये लॉकडाउन का कोई दिन है? ये हड़ताल का कोई दिन है? क्या इस आयत को पढ़ते आपको नहीं लग रहा सब दुकानें बंद हैं? देर इज नो मोर बिजनेस? और कुछ नहीं तो नॉर्वे के हिसाब से संडे के दिन को देख लीजिए कि जिस दिन शायद ही कोई दुकान खुली दिखे आपको। और अब तो अल्लाह ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि मैं जब चाहूँ तुम्हारे कारोबारी मराकज खुलवा दूं और जब चाहो बंद करा दूं। एक दिन आपकी मेरी जिंदगी का ऐसा आने वाला है, हाथ में माल होगा लेकिन कोई लेने वाला नहीं होगा। हमारी जायदादों की रजिस्ट्रियां हमारे हाथों में होंगी पर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज खुद को और अपनी बिलोंगिंग्स को अल्लाह के रास्ते में लगा दीजिए ताकि कल जाया होने का खतरा ना हो। आपकी फ्रिज में एक टमाटर भी अगर आपकी भूल की वजह से जाया हो जाए तो उस पे भी दिल में अफसोस होता है। कहां इंसान की पूरी जिंदगी गुजर जाए और वो हिदायत के बजाय गुमराही की रोड पे ही चढ़ता जाए और उसी पे रहे, ये हर इंसान को अपने बारे में सोचना है। आज हिदायत की तड़प में रोकर उठिए यहाँ से और यहाँ अपने लिए सवाल कीजिए कि मेरे पास जो कुछ है क्या मुझे उसका सही इस्तेमाल करना आता है। मैंने देखा है कि लोगों के इस्तेमाल होते हैं उनको पता ही नहीं खर्च कहाँ करें। मैं दो तरह के लोगों के बीच में जीती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दिन रात वर्ल्ड वाइड डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम हो रहा होता है, कोई किसी फील्ड में कोई किसी में। एक तरफ उनके मसाइल उनकी चीजें उनकी जरूरियात दिखती हैं मैसेजेस में पैगामात में मशवरों में और दूसरी तरफ मुझे कुछ ऐसे लोग दिखते हैं जिनके पास माल होता है घर होते हैं जायदादें हैं और वो सोचते हैं कि मरने के बाद क्या होगा अच्छा क्या करें बच्चों को दे कहीं जायदादों के झगड़े। मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर इंसान की अंदर की आंख खुल जाए तो आप क्यों विरासत के लिए छोड़ के जाते हैं? सगे भाई बहनों को आपने क्यों चुड़ियां बनाना है एक दूसरे के लिए? उनको भी दीजिए जिंदगी में और अपनी वसीयत जो आपने वन थर्ड की मरने के बाद के लिए संभाल रखी है जिंदगी में दीजिए। फिर देखिए आप जो ईमान की बहारें देखेंगे हो सकता है आपकी बीमारी दूर हो जाए और आपकी नेकी से अल्लाह आपकी उम्र को बढ़ा दे। लेकिन ये हिकमत बहुत थोड़े लोगों को होती है। अल्लाह ताला हमें हिदायत के एतबार से अपनी बिलोंगिंग्स और अपनी जिंदगी को इस्तेमाल करने वालों में बना दे कि हम जाया ना करें खुद को। और याद रखिये कि इंसान माल ही नहीं खर्च करता, बिलोंगिंग्स सलाहियतें स्किल्स इन सब को ये जान फेकू का लफ्ज है ना इसको अपनी आंखों में जमा लीजिए और नेकी की नियत कीजिए। अन फेकू मिम्मा रज़क़नाकुम, इसमें आपकी खूबी है। आपको अल्लाह ताला ने जो खूबी दी है उसको अल्लाह के दीन के लिए लाइए, अल्लाह की मखलूक के नफे में लाइए। पता चला आपके तिजोरियां भरी रही और लोग भूख से मर गए गुर्बत से मर गए, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। इस आयत की एक यूनिक चीज आपने अगर नहीं देखी तो मेरा फर्ज है कि मैं आपकी मदद करूं। बिल्कुल नजर जमाइए 254 पे और अगर अरबिक टेक्स्ट पे खोल लेंगे आपके पास खुला हुआ तो फिर तो आप झूम जाएंगे। आयत का आगाज हो रहा है याय अल्लाजीना आमनु, किसको पुकारा? ईमान वालों को। लेकिन आयत का इख्तिताम क्या है? वल काफिरूना हुमुज जालिमून, ये क्या बात हो गई? तो फिर यहाँ क्या बात समझ आई कि अमली कुफर मुराद है। बाज़ दफा ईमान लाने के बावजूद भी लोग कलमा तो पढ़ लेते हैं लेकिन हुक्मन कुफर पर आ जाते हैं। तो कुफर के मुर्तकिब लोगों की बात है, लोग उनको ईमान वाला समझे लेकिन वो अपने माल पर और अपनी सलाहियतों पर सांप बनकर बैठे रहते हैं और नहीं खर्च करते उसको तो अल्लाह के रस्तों पे नहीं करते। इसीलिए फिर ऐसे लोगों को अल्लाह ताला सिखाने के लिए कि मैं कोई भीख थोड़ी मांगता हूँ तुमसे, मैं तो मालिकुल मुल्क हूँ, आओ मैं तुम्हें बताऊँ मैं हूँ कौन। या मैं एक छोटी सी बात दर से कह दूँ कि अमूमन हम किसी को जब खुद अपने नाम पर कुछ देते हैं तो वेलवेट की पाउचेस के अंदर वो पाउंड का नोट डालकर भेजते हैं, वो 50 का ये 500 पाउंड है। और फिर सजाते संवारते और थाल सजा के शादियों में दुल्हनों के कपड़े आते और जाते हैं और जब कोई अल्लाह के नाम पे मांगे अव्वल तो देने के लिए मुश्किल और हो भी तो रेजगारी और चेंज और स्किल्स का तो टाइम ही नहीं है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ने जो वक्त हमें दिया वो उसके रस्ते में लगे। जब मुझे कोई कहता है ना टाइम ही नहीं है तो मेरा दिल कांप जाता है, किधर गया आपका टाइम, कहाँ चला गया? वो अच्छा बरकत चली गई आपके वक्त की क्योंकि आपने कम देना शुरू कर दिया, पहले तो आपके पास बहुत वक्त था। तो अल्लाह ताला के इस कलाम की इस आयत को जिसको आयतुल कुर्सी कहते हैं, आइए जरा इसको देखते हैं कि इसमें आपके मेरे लिए क्या है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह ताला ही माबूद बरहक है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जिंदा और सबका थामने वाला है, जिसे ना ऊंग आती है ना नींद, इसकी मलकियत में जमीन और आसमान की तमाम चीजें हैं। कौन है जिसकी इजाजत के बगैर इसके सामने शिफात कर सके, वो जानता है जो इनके सामने है और जो इनके पीछे है, और वो इसके इल्म में से किसी चीज का इहाता नहीं कर सकते मगर वो जितना चाहे। इसकी कुर्सी की वसत ने जमीन और आसमान को भी रखा है और वो अल्लाह ताला इनकी हिफाजत से न थकता है और न उकताता है, वो तो बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है। ये है जी आयतुल कुर्सी, ये वो तीसरा बड़ा नगीना है जो सूरत अल बकरा के इस आखिरी हिस्से में एक तवील आयत की सूरत में हमारे सामने, तकरीबन 10 जुमले हैं इस एक आयत के अंदर। और आप कह सकते हैं कि अल्लाह सुबहान ताला ने कैसे तौहीद बारी ताला को इस एक आयत में पिरो दिया। अल्लाह ताला की जो सिफात इसमें पढ़ी और उससे आपका मेरा अमल अगर देखें तो अल्लाह ताला ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसको तो हमारी हिफाजत इतनी प्यारी है कि एक लम्हे के लिए गाफिल नहीं होता। हम उससे गाफिल हो जाते हैं लेकिन वो हमसे नहीं होता। हम उसके लिए कितनी नींद छोड़ सकते हैं ये भी रमजान में पता लग जाएगा। हमारी नींद हमें वो आराम नहीं दे सकती जो अल्लाह के रस्ते के काम हमें आराम देते हैं। फिर आप एक लफ्ज पे गौर कीजिए, लहू माफ इस समावत, कंप्लीट ओनरशिप, उसकी मलकियत, मलकियत तामा है। फिर आप देखिए, मंजल्लजी यश फौइंदहु इल्ला बिइज़्निही, शिफात का मौजू है इसमें हमारे सामने और वो क्या है कि अल्लाह फैसले पहले करेगा, सिफारिश बाद में होगी। जुमला लिखिएगा, दुनिया की अदालतों में सिफारिश पहले होती है, फैसला बाद में दिया जाता है। अगर एक फैसला डिक्लेयर हो जाए तो कोई सिफारिश आए भी तो वो कहेंगे कि सॉरी अब तो नहीं हो सकता। आखिरत का मामला इसके अपोजिट है, अल्लाह ताला पहले खुद डिसाइड करेंगे कि किसको निजात देनी है, फिर इज्जत देने के लिए जस्ट फॉर ऑनर, जैसे दुनिया में किसी इदारे में बच्चों को जब सनदें देनी होती हैं या उनकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो किसी को भी बुला लिया जाता है मेहमान खसूसी के तौर पर और कहा जाता है कि आप ये गिफ्ट दे दें। क्या वो मेहमान खसूसी जिसको आप गेस्ट ऑफ ऑनर कहते हैं उसका फैसला होता है कि किसको फर्स्ट करना है, किसको सेकेंड, किसको? नहीं, फैसला इदारे का होता है, उस्तादों का फैसला होता है, उसके रिजल्ट बेस पे ये सारा मामला होता है। बिल्कुल लिखिए, अल्लाह ताला अंबिया कराम को, रसूलों को, नेक लोगों को, औलिया कराम को और इसी तरह और बहुत सारी चीजों को, खासतौर पर इंसानों में, उनको इज्जत देने के लिए वहां सिफारिश का हक देगा, क्योंकि दुनिया में अल्लाह की तरफ बुलाने वालों को वो हक नहीं मिला, उनकी वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं हुई जो अमूमन दुनिया में हिदायत से दूर करने वालों को मिलती है। ये तो जब बंदा हिदायत पे आता है ना खुद, फिर उसको हिदायत की तरफ बुलाने वाले अच्छे लगते हैं, फिर वो उनको फूल भेजता है, फिर वो उनको पत्तियां भेजता है और प्यार भरे जज्बे भेजता है। दिन रात इस मरहले से हम सब भी गुजरते हैं, लेकिन जब तक आप हिदायत की तरफ आए नहीं होते ना, उस वक्त तक तो आपको ये बात क्या मैसेज करने वाले बुरे लगते हैं कि इतने मैसेज क्यों भेजते हो, इतनी दफा क्यों कहते हो कि आ जाओ कुछ दीन का काम कर लो, आ जाओ कुछ वॉलंटियर कर लो। तो जब हिदायत की कदर आती है ना तो फिर हिदायत की तरफ बुलाने वाले प्यारे लगते हैं। तो गोया कि आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला इधर अंबिया कराम और नेक लोगों को वहां इज्जत देने की बात करते हैं। इस पे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह लैसा कमिस्लिही शैयुन के नाम पर एक लेक्चर है बहुत पहले का और बहुत ही फायदा मंद है, हर साल इसको रिकमेंड करती हूँ। आयतुल कुर्सी की तफसीर आप सुन सकते हैं मजीद बातों को जानने के लिए। आगे है आयत 256, ला इकराह फिद दीन, टॉपिक है दीन में शमूलियत में जबरदस्ती नहीं है। बहुत मिसअंडरस्टूड आयत है, बहुत सारे लोग जिनको कुरान की कोई और आयत नहीं समझ आती उनको भी आयत जरूर समझ आती है और वो इसके रेफरेंस देते हैं कि जी दीन में तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं। तो आइए ये जरा देखते हैं कि इसका असल क्या है। ला इकराह फिद दीन, दीन के बारे में कोई जबरदस्ती नहीं, सीधी राह टेढ़ी राह से मुमताज और रोशन हो चुकी है। इसलिए जो शख्स अल्लाह ताला के सिवा दूसरे माबूदों का इनकार करके अल्लाह ताला पर ईमान लाए, इसने मजबूत कड़े को थाम लिया जो कभी न टूटेगा। और अल्लाह ताला सुनने और जानने वाला है। क्या पता चला? आज आप देखिए, किसी को आप नमाज की बात करें तो वो कहता है जरूरी नहीं, मेरा दिल करेगा तो मैं पढ़ूंगा, और दीन में तो जबरदस्ती है नहीं, और बाकी चीजें तो इससे आगे है। पहली बात तो नोट कीजिए कि ईसाइत के एक बातिल नजरिए का तस्करा भी पीछे आयतुल कुर्सी में हमने पढ़ा। अल्लाह ताला कहते हैं ला वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, अल्लाह ताला का तो इन दोनों चीजों की हिफाजत नहीं थकाती। इसके बरक्स क्रिश्चियनिटी में क्या मिथ है कि अल्लाह ने 6 दिन में दुनिया बनाई और 7वें दिन आराम किया, इसी से वो संडे का कॉन्सेप्ट बना और छुट्टी का दिन आम हो गया। अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं, मेरे पास ऐसी कोई कमी नहीं है, तुम थकते होगे, मैं तो नहीं थकता। फिर इसके साथ ही आप देखिए कि यहाँ जब ला इकराह फिद्दीन की बात आई तो इसको उसी के साथ अगर आप जोड़कर या अलग भी देखें तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मुसलमान होने के बाद तुम अपनी मर्जियां करो, अपने आप को जिधर चाहो ले जाओ। आप देखिए कि आप किसी बच्चे को स्कूल में दाखिल ना करें कराएं, कोई नहीं रोकता आपको। आपका बच्चा 12 बजे सो के उठे, 1 बजे उठे, उनको क्या लगे। लेकिन जिस दिन आपने अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवा दिया, फिर आप 8 बजे से अगर 1-2 मिनट लेट हुए तो फिर वो आपको बता देंगे कि क्या होता है। दुनिया में हर जगह रूल्स को फॉलो किया जाता है। बच्चे 1 मिनट से ऊपर हो गए, दूसरी तीसरी टाड़ी पे आपको बच्चे का सर्टिफिकेट पकड़ाएंगे कि इसको आप घर रख लीजिए। ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी होती है, एयरपोर्ट्स के डिसिप्लिन की पाबंदी होती है। तो ये कैसे हो सकता है कि दीन की पाबंदी ना हो? अल्लाह का दीन जो सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा लेके जाने वाला है, उसकी ना हो। तो जब इस्लाम के दफ्तर में दाखिला ले लिया तो फिर पाबंदियां लगेंगी। डोंट बी एम्बेरस्ड, डोंट बी जस्ट लाइक आप लोगों को ये ना करने, नहीं, नहीं, नहीं कुछ नहीं होता। देखिए अबू जहल कहता था, पीछे सुनाया था शायद आपको, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा दीन सच्चा पर मैं इसलिए नहीं मानता कि फिर मुझे बहुत सारी बातें माननी पड़ेंगी। देखा जाए तो उसकी जरूरत ज्यादा थी। आज हम मुसलमान होकर अगर अपने आप को बचपन से पैदाइशी मुस्लिम होने से लेकर आज 40 साल की उम्र पे अगर हम आ गए तो क्या हम नमाज ना पढ़ें और हम कह दें कोई बात नहीं देखी जाएगी? नहीं, ये बात कोई न्यू मुस्लिम कह सकता है? हिदायत के एतबार से जिस बंदे ने अभी तक पहले कदम, पहली सीढ़ी पे कदम रखा, वो कह सकता है कि मुझे नमाज मुश्किल लगती है? मुझे आपको तो ये कहने का हक भी नहीं है। तो इसलिए आपके मेरे लिए, और जितना आप हिदायत के हिसाब से अपने आप को ऊपर से ऊपर करते जाएंगे उतना ज्यादा आपको इस आयत को समझना पड़ेगा। अपने दिलों का जायजा लीजिए, क्या अल्लाह और उसके रसूल का मुकाम पा लिए? जब आप हिदायत के इस मरहले पे आ जाते हैं ना तो फिर बाकी काम आसान हो जाते हैं। आप जिस बंदे की इज्जत करने लग जाते हैं, आप उसकी बात मानने लग जाते हैं। आपके माँ बाप की इज्जत है ना, तो आप पहली पुकार पे उनके पास पहुंचे होंगे, उनकी मिस कॉल देखकर भी आप उनको फौरन रिप्लाई बैक करेंगे। और जब आपके दिल में उनकी इज्जत कदर नहीं होती और आप कहते हैं आप हमें इनसे लेना भी क्या है, अब तो देना ही पड़ता है, इनकी तो दवाइयां ही बड़ी महंगी हैं, छोड़ो पता नहीं क्यों किया होगा कॉल, कोई दवाई मांगनी होगी, तो फिर आप उनकी बात को नहीं सुनते। जिस दिन हमारे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की बात अपनी जगह पकड़ गई, उसके बाद क्या होगा इसका तस्करा आगे आपको आयत 257 से 260 तक। दावत हक के 3 मुशाहिदात, 3 मुख्तलिफ वाकयात हैं, देखेंगे कि जब बंदा अल्लाह का बंदा बनना चाहता है तो फिर रस्ते की क्या रुकावटें आती हैं। अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू युख्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, अल्लाह ईमान लाने वालों का कारसाज है, यानी दूसरे लफ्जों में आप कहिए ईमान लाने वालों का कारसाज, उनके काम बनाने वाला खुद अल्लाह ताला है, वो इन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल ले जाता है, और काफिरों के औलिया शयातीन हैं, वो इन्हें रोशनी से निकाल कर अंधेरों की तरफ ले जाते हैं, ये लोग जहन्नमी हैं जो हमेशा इसमें पड़े रहेंगे। क्या तूने उसे नहीं देखा जो सल्तनत पाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इसके रब के बारे में झगड़ रहा था? जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब तो वो है जो जिलाता और मारता है, यानी जिंदा भी करता है और मारता भी है, वो कहने लगा मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला सूरज को मशरिक की तरफ से ले आता है, तू इसे मगरिब की जानिब से ले आ। अब तो वो काफिर हैरान रह गया, और अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। यहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नमरूद के साथ एक मनाजरा जो हुआ उसका तस्करा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वक्त के जालिम हुक्मरान के सामने कलमाए हक पेश कर रहे हैं। कोई दिल में बोझ नहीं तो लिखिए 258 आयत बताती है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल अल कल्ब साबित था। बड़ी से बड़ी ताकत सामने हो, बड़े से बड़ा खौफ दिलाया जाए, बड़ी से बड़ी उम्मीद दिलाई जाए, लेकिन बंदे का दिल अल्लाह की बात पे जम जाए, इसको साबित कदमी वाला दिल कहते हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह आपका मेरा दिल साबित कदमी वाला बना दे। कहां किसी जरा से चार लफ्ज पड़े बंदे के सामने खड़े हो जाएं, हमारी टोन बदल जाती। डॉक्टर के पास जाते हुए कहते हैं क्या करें, शेक हैंड करना पड़ता है। फिर वेस्टर्न कंट्रीज में डॉक्टर्स हाथ आगे बढ़ाते हैं, अपने लिए अमल की बात लिखे। कल्ब साबित बनिए, आपका दिल साबित रहे, मेरे रब की बात के खिलाफ मैं क्यों बोलूं। इसके लिए शर्त क्या है? दो शरायत आपके सामने एक फ्लो चार्ट में है, अकीदे पे पुख्ता यकीन और अल्लाह पर ईमान मुकम्मल मजबूत जमे हुए। अल्लाह के सिवा कोई और नहीं है जो मुझे खिलाए पिलाए, तो मैं किसी की बात क्यों मानूं। और इसके बाद आप देखिए कि यहाँ आयत के आखिर में वो अल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन की बात हुई, तो अल्लाह ताला जालिमों को हिदायत नहीं देता। कौन है जालिम? आयत के एतबार से देखा जाए तो नमरूद का तस्करा है। हमें सही हदीस से भी मिलती है ये बात कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में जो मामला था वो नमरूद के साथ था, जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फिरौनियत का दौर था और फिरौन था। वहां आपके सामने चार चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं। किसको जालिम कहा गया इस आयत की रोशनी में? जी वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन। नंबर एक, जो बंदगी के हद से तजावुज करे। आयत 258 में लिखिए वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन। कौन है जालिम? नंबर एक, जो बंदगी की हद से तजावुज करे, जो जबरदस्ती अपने हुक्म चलाए, जो खुद को खुद मुख्तार समझे और जो अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी करे। अल्लाह ताला हमें ऐसे जालिम होने से बचाए। इसके बाद फिर मजीद दो वाकयात। या उस शख्स की मानिस के जिसका गुजर इस बस्ती पर हुआ जो छत के बल ऊंधी पड़ी हुई थी, वो कहने लगा इसकी मौत के बाद अल्लाह ताला इसे किस तरह जिंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने इसे मार दिया 100 साल के लिए, फिर इसे उठाया, पूछा कितनी मुद्दत तुम पर गुजरी? कहने लगा एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। फरमाया बल्कि तू 100 साल तक रहा, फिर अब तो अपने खाने पीने को देख, फिर अब तो अपने खाने पीने को देख के बिल्कुल खराब नहीं हुआ, और अपने गधे को भी देख, हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाते हैं, तू देख के हम हड्डियों को किस तरह उठाते हैं, फिर इन पर गोश्त चढ़ाते हैं, ये सब कुछ जाहिर हो चुका। तो कहने लगा मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। हजरत उज़ैर की तरफ इस वाक़े की निस्बत की जाती है, जिनको बाद में फिर अल्लाह का बेटा भी समझा गया। लेकिन बात यह है कि अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इन अंबिया कराम जिनका हम तज़किरा पढ़ रहे हैं, इनके जरिए से ये बात बताते हैं कि जब इंसान के दिल में अल्लाह ताला की बड़ाई आ जाती है, तो अगर हल्का सा दिल में कोई शक भी आ जाए तो भी इंसान अपने आप को थाम लेता है। नमरूद ने जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बहस करनी चाहिए, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो पहली दलील जो उसने दी थी उससे भी उलझ सकते थे, लेकिन वो उलझे नहीं बल्कि एक और दलील दे दी, क्योंकि अल्लाह के तौहीद के दलाइल में कोई कमी थोड़ी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी पता था और आज हम ईमान वालों को भी ये पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला की बात किसी दुनिया के बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म में जाकर भी अगर इंसान करना चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह इंसान के पास दलाइल मौजूद होते हैं। और अल्लाह सुबहाना ताला ये सब कुछ करके आपको मुझे ये बता देता है कि तुम अपने आप को अल्लाह की तौहीद पे जमा लो। जितना ज्यादा अल्लाह ताला की तौहीद पे मेरा आपका ईमान बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा अल्लाह ताला हमारे साथ मामलात खूबसूरतियों के करते ही जाएंगे। फिर एक और वाक्या है जो भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से है। वइज़ क़ाला इब्राहीमु रब्बि अरिनी कैफ़ तुहयील मौता। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा है मेरे परवरदिगार तू मुझको दिखा कि तू मुर्दों को किस तरह जिंदा करेगा, जनाबे बारी ताला ने फरमाया क्या तुम्हें ईमान नहीं? जब आप यही मानते हैं, लेकिन मेरे दिल की तस्कीन हो जाएगी। पर मैं चार परिंदे ले लो, इनके टुकड़े कर डालो, फिर हर पहाड़ पर इनका एक एक टुकड़ा रख दो, फिर इन्हें पुकारो, तुम्हारे पास दौड़ते हुए चले आएंगे। और जान रखो कि अल्लाह ताला गालिब हिकमतों वाला है। इसमें भी अनयूजल चीज है, तो देखिए आयत 60, अल कल्बुल मुतमईनुन, पुर एतमाद दिल। अल्लाह के हर फैसले, अल्लाह की हर बात पर एतमाद करने वाला दिल होता है। तीन चीजें याद रखिएगा, काला बला वला किलियतमईन कल्बी के ऊपर। कब दिल कल्बे मुतमईन में ढलता है? पहले तो अपने लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरे दिल को मुतमईन दिल बना दे। यकीन करें, दुनिया आपकी जन्नत बन जाएगी। किसका दिल इत्मीनान पकड़ेगा? नंबर एक, जो अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखेगा। जिंदगी में अंधेरे हो जाए, कोई रास्ता नहीं खुल रहा, टनल, लेकिन याद रखिए एट द एंड ऑफ टनल देयर इज सम लाइट। आप अपने आप को चेक कीजिए, हर एक अपनी उम्र, अपने वक्त, अपने स्टेटस के एतबार से मेरी इस बात को ले। गमों की धूप है या अंधेरे हैं या बदलियां दिल पे छा गई, इसके बावजूद आप अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं, बस फिर आप मुतमईन हैं। बीमार हैं, डॉक्टर कहते हैं खत्म, किस्सा खत्म, वेंटिलेटर फुला फुला, आपको अपने रब से उम्मीदें। फिर दूसरी बात है शैतानी वसवसों से दूर रहने वाला दिल। आपके दिल में ठहरे ही ना कोई गलत बात, ना अल्लाह के बारे में, ना अल्लाह वालों के बारे में, ना अपने साथियों के बारे में, ना घर वालों में। जिस बंदे के दिल में कोई गलत ख्याल ठहरे ही ना, वो खुश रहता है। वरना आप तो अपने घर में हर वक्त एक जंग लड़ रहे होते हैं, कभी एक रिश्ते के खिलाफ तो कभी दूसरे। और तीसरी बात, शकुको शुबहात से बचने वाला। ना तो शक दिल में ठहरेगा ना शुबा, शर्त एक है कि आपकी डायरेक्शन सीधी हो। कभी कभी बंदे के दिल में आ जाता है ख्याल, साथ रहने वालों, साथ काम करने वालों, एक घर में रहने वाले, शोहर बीवी एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। साहबे कराम कहा करते थे, कभी कभी दिलों में ऐसे ख्याल आते हैं कि हम जल के राख हो जाएं, इससे बेहतर है कि हम उसको जुबान पे लाएं। लेकिन जुबान पे नहीं लाना, दिल में नहीं रखना, दिल गंदा होने लगता है। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कल्बे मुतमईन बना दे। और ये दुनिया की जन्नत है, इत्मीनान असल में जन्नत की नेमत थी। अल्लाह सुभान व तआला यहाँ दुनिया में दे दे, इससे बड़ी खुशबख्ती और क्या होगी। इसके बाद देखिए आयत नंबर 261 से लेकर अब 274 तक, इन्फाक फी सबीलिल्लाह की मुमकिना सूरतें हैं। यानी मसलुल्लज़ीन युन्फिकून अमवालहुम फी सबीलिल्लाह, यहाँ से ये मौजू शुरू होगा। फिर आगे देखिए तो 261 आयत खास तौर पे इन्फाक फी सबीलिल्लाह की बेहतरीन किस्म पे मुहित है। फिर आगे हम देखेंगे इसमें उशर की बात है, नजर मानने की बात है, मन्नत मानने की बात है, और फिर आगे दूसरी सूरतें भी दिखेंगी। तो पढ़ते हैं इसको और अपना मुहासबा भी करते जाएंगे। मसलुल्लज़ीना युन्फिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह, जो लोग अपना माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं, इनकी मिसाल इस दाने जैसी है जिसमें से 7 बालियां निकलें और हर बाली में से 100 दाने हो, और अल्लाह ताला जिसे चाहे बढ़ा चढ़ा कर दे, और अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। लिखिए एक जुमला, शऊर के साथ बोलूंगी, आप भी लिखिएगा। मट्टी अल्लाह की मखलूक है, बेजान है, बेअक्ल है। आप उसके सीने में एक बीज डाल देते हैं, गोया कि आपने मट्टी को एक दाना दिया, बदले में वो आपको 700 दानों से बढ़कर हजारों में भी बदल के वापस करे। ये है दलील इस बात की कि जब मखलूक इतनी फैयाज है तो खालिक और मालिक कितना देगा। इसको दिल की तख्ती पे लिखिएगा इस जुमले को। आयत 261 आपको ये बताती है कि आपका रब क्यामत के बाद भी और दुनिया में भी आपको बेहिसाब देने पे कादिर है। वलहुम अजरुन गैरु ममनून, आज जिंदगी में कुछ करते जाइए। कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, पीछे पलट कर ना देखे कि क्या कर लिया, तो मजीद करेंगे जो अपनी पिछली नेकियों पे या तो मान करते हैं या फिर उसको छोड़ देते हैं, उनके साथ से वादे नहीं है। कमियों बेशियों कोताहियों के साथ काम करते जाइए, वरना एक वक्त होगा आप किसी और से पूछ ले, मैं मसरूफ हूं। ये भी जुमला वो बोलता है बड़ा शाइस्ता। मेरा ख्याल है आप किसी और से ये काम ले लें, मैं इस वक्त मेरे हालात नहीं, और ये हालात 6 साल से चल रहे हैं, 8 साल से चल रहे हैं, 10 से चल रहे हैं। एक वक्त आता है कि इंसान को फिर ये फिक्र भी खत्म हो जाती है कि मेरे नेकियों के नामे अमाल में कितना कुछ कल तक जाता था, अब क्यों नहीं जा रहा। जरा सा अपने और मुहासबा कीजिए, क्या मैं सुनने वालों में से हिदायत के एतबार से उस मुकाम पे तो नहीं हूं कि पिछले सालों में तो मेरी जिंदगी में इतनी नेकियों की बहार थी रमजान और उससे अराउंड, और आज नहीं है। और ये कब होगा? हो सकता है बीमार है, रोजे नहीं रख सकते, पहले रोजे रखते थे, क़यामुल लैल था, रातों की तरावियां थी, अब नहीं है। तो हमेशा मुहासिब बनिए अपने लिए, अपनी नेकी के छिनने पर रोना ये बंदे के हिदायत की तरफ बढ़ने की दलील बन जाता है। फिर फरमाया, जो लोग अपना माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं फिर इसके बाद ना तो एहसान जताते हैं और ना ईजा देते हैं, इनका अजर इनके रब के पास है, इन पर ना तो कुछ खौफ है और ना वो उदास होंगे। ऐसे लगता है एकदम अल्लाह ने दिल की बात पढ़ ली। आप देखिए, माल में वक्त भी है, माल भी है, स्किल्स भी हैं, बहुत कुछ है। जो अल्लाह के लिए करके एहसान ना जतलाए, बस डाउन टू अर्थ हम्बल, कुछ भी तो नहीं किया, क्यों? अल्लाह उनको बेखौफ कर देता है और अजर तो फिर अल्लाह ही देगा। अपने लिए ये असूल बना ले, एहसान नहीं जतलाना। कभी कभी मुंह से निकलता है, आगे पढ़ेंगे सूरत अल कहफ में, मूसा कह चुके कि ओहो हम तो इस सफर में थक ही गए। तो मुफस्सरीन कहते हैं कि बंदे को थकन हो तो कह देता है, कोई बात नहीं, गुनाह नहीं है, लेकिन जितना इस काम को करके खुशी का इजहार करे, डोंट डू इट्स ओके। और मैं इस पे इतनी ब्लेस्ड फील करती हूँ अपने आप को, अल्लाह ताला करवट करवट उन लोगों को बेहतरीन नजर दे। रातों की मेहनत, दिनों की मेहनत, अगर एक सेकंड में कह दू ना कि ये नहीं ऐसे, कोई बात नहीं, इट्स ओके, और चंद घंटे के अंदर नई चीज तैयार है। होता ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हो तो मुझे यकीन है कि ऐसे लोग मौजूद हैं। ये कौन से लोग हैं जिनको ये पता है कि हमारा वक्त जाया नहीं हुआ, ये अल्लाह ने रख लिया है कहीं, और वही चीज कहीं और चल पड़ती है, कभी जाया नहीं हुआ। और मैंने तो अल्लाह के हुक्म से एक कभी एक चावल का दाना जाया नहीं किया, मैं तो कभी किसी की मेहनत भी जाया नहीं होने देती। कभी साथी के ये कर दें, ये नहीं करें, ये निकाल दें, मैं कहती नहीं, रख दीजिए, कहीं और काम आएगा, अभी इसका वक्त नहीं आया। तो ये असूल जिंदगी में अगर होगा तो अल्लाह सुबहान तआला आपको मजीद नेकियां करने का मौका भी देगा। फिर आप देखिए, एक फ्लो चार्ट है आपके सामने, मसलुल्लज़ीना युन्फिकून अमवालहुम फी सबीलिल्लाह, इन्फाक फी सबीलिल्लाह की बात है, और चार सूरतों में से ये बेहतरीन सूरत है, और इसको सिक्योर करने के दो नुस्खे हैं आपके पास। नंबर एक, ना एहसान जतलाया जाए और ना ईजा दी जाए। अब मैं आपको पढ़ाने के बाद नखरे करूं, गला थक गया, ये हो गया, तो मुझे क्या मिलना है इसमें से? आपको हिदायत मिल जाएगी मेरे बताने से, मुझे नहीं मिलेगी। तो याद रखिए कि अपनी नेकी को इस तरह प्रेजेंट करना कि दूसरा गुनाहगार बन जाए, ये भी कोई पसंदीदा बात नहीं है। और कभी कभी इंसान नहीं दे सकता, फकीर वाहिर है, आप नहीं दे सकते, तो अल्लाह ताला ने उसका भी रास्ता बता दिया कि कभी कभी माल दिया जाता है और कभी कभी नरम बात की जाती है। वो कहते हैं कि गुड़ ना दो, गुड़ जैसी बात तो करो, यही है बात, कौलुम मारूफुम व मग़फ़िरतुम खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा, नरम बात कहना और माफ कर देना इस सदके से बेहतर है जिसके बाद ईज़ा रसानी हो, और अल्लाह ताला बेनियाज और बुर्दवार है। बाबे को ये ना कहा करो बाबा माफ कर, चला जा, कुछ नहीं है, रोज आ जाते हो। मासी को ये ना कहा करो तुम्हारी तो जरूरतें कभी नहीं पूरी होनी, तुम तो हो ही हमेशा की मांगती। कभी ना कहिए, अपने आप को उनकी जगह पे ले आए, और दीमक
इन्फाक फी सबीलिल्लाह चाहे माल का हो, वक्त का हो, किस स्किल्स का हो, दे कर जतलाना या एहसान जतलाना या ताने देना क्या है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल्मन्नि वल अज़ा, ईमान वालों अपनी खैरात को एहसान जतला कर और ईज़ा देकर बर्बाद न करो। जिस तरह वो शख्स जो अपना माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करे, यानी जो अपना माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करे और न अल्लाह पर ईमान रखे न क़यामत पर, इसकी मिसाल इस साफ पत्थर की तरह है जिस पर थोड़ी सी मट्टी हो, फिर इस पर जोरदार मीं बरसे और वो इसको बिल्कुल साफ और सख्त छोड़ दे। इन रियाकारों को अपनी कमाई में से कोई चीज हाथ नहीं लगती और अल्लाह ताला काफिरों की कौम को सीधी राह नहीं दिखाता। कांपने वाली आयत है। इस आयत को पढ़ने के बाद तो दिल कांप जाना चाहिए कि कहीं मेरी ये नेकियां सिर्फ मुज़ैक और पत्थर पे पड़ा हुआ पानी न साबित हो। जितनी देर बारिश बरसती रही फर्श गीला रहा, इधर बारिश खत्म उधर पानी खत्म और जगह और खुश्क हो गई। याद रखिए इस आयत में आपको जो पैगाम मिल रहा है आपके सामने है और वो कह के वल्लाहु ला यहदी वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन। रियाकार हिदायत नहीं पाता, शो ऑफ करने वाला, दिखावे के लिए दूसरों को जतलाने वाला कभी हिदायत नहीं पाएगा। रियाकार क़यामत के दिन पर यकीन नहीं रखता, सीधी सी बात है। इसीलिए तो वो फिर अल्लाह से अजर नहीं पाना चाहता, दुनिया में अजर लेना चाहता है। और दूसरी बात है कि ऐसा शख्स दुनिया में अपने अमल का अजर चाहता है। आपने कभी एग्जीबिशन देखी या सुनी हो? जो एग्जीबिटर्स होते हैं ना, अपनी चीजों को छुपा के रखते हैं। कपड़ों की एग्जीबिशन हो, कोई आर्ट वर्क हो, इवन जिन जगहों को डेकोरेट किया जाता है उन जगहों के लिए उसके बाहर कपड़े चादरें लगाते हैं कि कहीं लोग शोकेसेस को पहले ना देख लें। जैसे आप कह सकते हैं कि ओपनिंग होनी होती है, क्यों? एकदम खोलेंगे। आप दुल्हन के जोड़े को ही देख लें, लोगों ने इसको भी इस पे रखा हुआ है, हवा नहीं लगने देते किस रंग का है कहां से, ताकि एकदम जो दुल्हन पहन के आए तो सारी बेहोश हो जाए। तो तारीफ फिर कौन करेगा? शो ऑफ, दिखावा, रियाकारी, ये तो दुनिया की मिसालें हैं ना। मोमिन की मिसाल कैसी होती है? लिखिए, हिदायत के तलबगार दिल की मिसाल कैसी होनी चाहिए? अपनी नेकियों को एग्जिबिट करने के लिए छुपा के रखिए। कल क़यामत के दिन जब होगा तो देख लेंगे। आप देखिए कि आपके माँ या बाप में से कोई नहीं होगा दुनिया में आज, आपसे अल्लाह कोई नेकी लेता है? लोग कहते हैं हाय आपके माँ बाप होते, आपके माँ होती, आपके बाप होते, आपकी नेकी देखते, तो आप क्या क्या कहना चाहिए? कोई बात नहीं है, वहां दिख जाएगा, उनको वहां जा रहा होगा और चला जाएगा, जरूरी थोड़ी है बताया जाए। और जाया नहीं करना अपने अमल को और इस तरीके से अपने आप को लेकर चलिए कि आपका दिया लिया जाया ना हो। अब आगे अल्लाह सुबहाना तआला ऐसे लोगों की बात करते हैं कि जो देने के बाद जाया नहीं करते बल्कि और फेंक करते हैं। और वो कौन लोग हैं जिनका जिक्र है इसमें? व मसलुल्लज़ीना युन्फिकूना अमवालहुम इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, इन लोगों की मिसाल जो अपना माल अल्लाह ताला की रजामंदी की तलब में दिल की खुशी और यकीन के साथ खर्च करते हैं, इस बाग जैसी है जो ऊंची जमीन पर हो और जोरदार बारिश इस पर बरसे और अपना बल दुगना लाए, और अगर इस पर बारिश ना भी पड़े तो फुहार ही काफी है और अल्लाह ताला तुम्हारे काम देख रहा है। यानी बंदों को नहीं पता चलता कि तुम्हारा दिल क्या है, अल्लाह को पता चलता है। अब आगे एक मिसाल है। पहले तो दुआ कर लीजिए कि हम में से किसी के साथ ऐसा मामला ना हो। और वो क्या? अयवद्दु अहदुकुम अन तकून लहू जन्ना, क्या तुम में से कोई भी ये चाहता है कि इसका खजूरों और अंगूरों का बाग हो जिसमें नहरें बह रही हों और हर किस्म के फल मौजूद हों, इस शख्स का बुढ़ापा आ गया हो, इसके नन्हे नन्हे से बच्चे भी हों और अचानक बाग को बगोला यानी आग का गोला पड़ जाए, ऐसा बगोला लग जाए जिसमें आग भी हो, बस वो बाग जल जाए। इस तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयते बयान करता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, ये उस शख्स की मिसाल है जो सारी जिंदगी नेकियां करता है और बुढ़ापे में गलत तरफ चल पड़े। दुआ कीजिए अल्लाह हमारे बुजुर्गों के बुढ़ापे को सलामत रखे। आज कई ऐसे भी लोग हैं, सारी जिंदगी हिदायत पे रहे लेकिन जब उम्र बढ़ी तो साथ ही साथ हिदायत कम हो गई। इसके बाद आगे उश्र का जिक्र है। हम चूंकि इन्फाक फी सबीलिल्लाह की मुख्तलिफ फॉर्म्स को देख रहे हैं, तो उश्र क्या है? फसल पर कुछ हिस्सा देना। आमतौर पर वो माल जो एक साल तक आपके पास रहे, साल के बाद आप उसमें से 2.5 देते हैं, इसको ज़कात कहते हैं। लेकिन जमींदार लोग, और खास तौर पर पाकिस्तान के अंदर रहने वालों के लिए कहूंगी कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, यहाँ बहुत सारे लोग जमींदार भी हैं, तो उनको ये मसाइल आम समझ आने चाहिए कि हर फसल पर साल में एक बार आए या दो बार आए उशर होगा। बारानी जमीन पे और रूल है, और जो पानी खुद दिया जाता है उस पे और होता है। लेकिन हम तो आपस के झगड़ों में इतने मसरूफ हैं कि हम ये छोटे छोटे डे टू डे मसाइल आम लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाते। तो सुनिएगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अपनी पाकीजा कमाई में से और जमीन में से तुम्हारे लिए हमारी निकाली हुई चीजों में से खर्च करो, इनमें से बुरी चीजों के खर्च करने का कसद ना करो जिसे तुम खुद लेने वाले नहीं हो। हाँ आंखें बंद कर लो और जान लो कि अल्लाह ताला बेपरवाह और खूबियों वाला है। यानी अल्लाह को चुन चुन के अच्छा दो, यानी कि छांट छांट के छटाई करके बेकार चीजें दे दो। जोड़ा देने लगे मासी को तो क्या हाल है, नहीं दुपट्टा तो मैं रखूंगी, इसके साथ और जोड़ा बनाऊंगी। चलिए ये लेस, ये तो इतनी महंगी थी, 1000 रुपए गज थी, उतार लो, ये तो मैं किसी और जोड़े पे लगाऊंगी। अब दिल पे हाथ रखकर जोड़ा देने लगे तो बटनों पे नजर पड़ गई, ओहो ये तो 500 रुपए के बटन आए थे, मासी ने क्या करना। चले नुचा पुचा जोड़ा देकर हातमताई की कब्र पे आप लात मारते हैं, ये ना कीजिए। आपको अगर कोई ऐसा दे तो आपको कैसा लगे? देखिए मेयार फर्क हो सकता है, जो आपका मेयार है वो आपकी मासी का नहीं। आप रॉ सिल्क पहनते हैं, मासी नहीं पहनेगी, वो बेचारी काम करेगी, पसीना आएगा, घर जाके धोएगी, उसके पास तो ड्राई क्लीन के पैसे नहीं है। यहाँ जो बात की जा रही है वो ये है कि जरा सा देते वक्त अपने आप को रिसीविंग एंड पे ले आओ कि अगर कल कोई मुझे दे देगा तो मुझे कैसा होगा। लेकिन बात यह कि शैतान जो हमारा कदम कदम पे दुश्मन बन के खड़ा है ना, वो क्या करता है? इसका तस्करा 268 में देने लगे खासतौर पे, और कोई भी चीज देने लगे, बल्कि बाज़ुका तो दी हुई चीज नहीं देने का हौसला करता बंदा, कह देता है, दे देता है शैतान, फिर नियतें बदलता है। तो सुनिएगा, अश शैतानु यईदुकुमुल फक्र व यामुरुकुम बिल फख्शा, शैतान तुम्हें फकीरी से धमकाता है, यानी कहते नाना तुम ना देना फिर फकीर हो जाओगे। अब क्या हुआ, आप नहीं देते तो माल बहुत हो गया, तो फिर क्या कहता है? और बेहयाई का हुक्म देता है, यानी जब एक्स्ट्रा माल हमारे पास ज्यादा हो जाता है ना, फिर उसको बेहयाई के रस्तों में लगाता है। और अल्लाह ताला तुमसे अपनी बख्शिश और फजल का वादा करता है, अल्लाह ताला वसत वाला और इल्म वाला है। तो शैतान का तरीका वारदात है ये, जब माल गुजारे का होता है ना तो बंदा नपातुला रहता है। देखिए वाजबी कपड़े तो वाजबी सी शक्लो सूरत घर में तैयार हुए, आप किसी एक जगह बैठ जाएंगे जाकर, लेकिन शक्ल भी अच्छी, कपड़े भी अच्छे, मेकअप भी अच्छा, ज्वेलरी भी ब्रांडेड, तो फिर आप सबको दिखाएंगे, फिर अदाएं भी आ जाती हैं। वो कहते हैं ना, हुसन आता है तो नखरा भी आ जाता है, शैतान फिर बेहयाई करवाता है। जितना पैसा ज्यादा उतना कपड़ा मुख्तसर, पैसे के साथ बाजू उतर गए, घुटने खुल गए, टखने खुल गए, कोई बात नहीं। अगर आप हिदायत के एतबार से भी शुरू में, आपके लिए मेरे ये जुमले नहीं, आप मत सुनिए, ये आपके लिए नहीं है। आप कल तक स्लीवलेस में थी, आज एक हल्का सा कपड़ा ऊपर रख लीजिए वो भी बहुत है आपके लिए, लेकिन बात ये मेरे जैसों के लिए जो अपने आप को हिदायत वाला समझते हैं। हर बंदा अपने आप को चेक करे, मेरे शैतान कहाँ बहकाता है। अपनी वार्डरोब को देखिए और बस सेटिंग कर लीजिए। अल्लाह के नबी ने दीन का जो मिजाज हमें दिया ना, वो ये नहीं है कि सब फेंक दो, रीसेट कर लीजिए, बेले लगा लीजिए, एक्स्ट्रा कपड़ा लगा लीजिए, कपड़ों को जरा खुला कर लीजिए, जरा टखनों के नीचे कपड़ा लगा लीजिए, बस ये है आपका हिदायत की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम। फेंकना तो नहीं मुराद, जाया तो नहीं करना, जो बाहर पहनते थे वो अंदर पहन लीजिए, जो दुनिया को दिखाते थे वो शौहर को दिखा लीजिए, बस इतनी सी बात है। और इसीलिए फिर आप देखिए अगली आयत क्या खूबसूरत है, यूतिल हिकमत मैं यशा व मैं यूतिल हिकमत फकद उतिया खैरन कसीरा। और यहां चूंकि माल के खर्च करने के लिए हिकमत की बात है, तो जरा से दिल के कानों से सुनिएगा, क्योंकि यहां हिकमत का आना इस बात की दलील है कि कहाँ खर्च करना है, कहाँ देना है, कब देना है, कितना देना है। पढ़ के तर्जुमा बात करते हैं। वो जिसे चाहे हिकमत और दानाई देता है, और जो शख्स हिकमत और समझ दिया जाए वो बहुत सारी भलाई दिया गया, और नसीहत सिर्फ अकलमंद ही हासिल करते हैं। तुम जितना जो कुछ खर्च करो यानी खैरात और जो कुछ नजर मानो, इसे अल्लाह ताला खूब जानता है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं है। अगर तुम सदके खैरात को जाहिर करो तो वो भी अच्छा है, और अगर तुम इसे पोशीदा कर दो यानी इसे पोशीदा पोशीदा मिस्कीनों को दे दो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा, और अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम आमाल की खबर रखने वाला है। इन्हें हिदायत पर ला खड़ा करना आपके जिम्मे नहीं, बल्कि हिदायत अल्लाह ताला देता है जिसे चाहता है, और तुम जो भली चीज अल्लाह की राह में दोगे इसका फायदा खुद पाओगे। इसको हाईलाइट कीजिए। जब आप देने की बजाय लेने वाले समझ कर देते हैं ना, तो दिल खुल जाता है। आप कहते हैं ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ। तो फिर सुनिए इस जुमले को, और जब तुम दोगे कुछ भी जो तुम्हें अल्लाह ने दिया, तुम जो भली चीज अल्लाह की राह में दोगे इसका फायदा खुद पाओगे। तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रजामंदी की तलब के लिए ही खर्च करना चाहिए। तुम जो कुछ भी खर्च करोगे इसका पूरा पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा, और तुम्हारा हक मारा ना जाएगा। अल्लाह जो हक मारने को वैसे ही मना कर दे, हराम कर दे, वो खुद कैसे किसी का हक मारेगा। तो जरा से इस पे गौर कीजिए। वमा तुन्फिकून इल्ला इब्तिगा वजहिल्लाह, माल का खर्च सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए। क्या मिलेगा आपको इससे? पहली बात यह है कि खैरात से आप अल्लाह का कुर्ब पाएंगे, फिर अल्लाह ताला इसको दुगना चुगना कर देता है, मल्टीप्लाई, और इसी तरह से अल्लाह के हाँ मकबूल दर्जे पाता है ऐसा बंदा। आप देखिए कि बार बार खर्च की बातें आ रही हैं, और ये कुरान पाक का बड़ा खूबसूरत मुकाम है कि जहां आप इन्फाक फी सबीलिल्लाह को समझते हैं। हिकमत की बात यहां क्यों आई इसको समझ लीजिएगा। हिकमत की बात क्या है यहां पे आपके मेरे लिए, कि कब खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, किस मौसम में खर्च करना है। इसको जरा सा फसल के साथ रिलेट करके अपनी सलाह चाहते हैं। आप देखिए कि जो लोग जमींदारी करते हैं उनको ज्यादा पता होगा, मेरी मिसालें गलत हो सकती हैं क्योंकि ना मैंने किसी को देखा करते ना सुना, लेकिन सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। चावल का एक सीजन होता है, चावल का बीज जब उस सीजन में आप डाल देते हैं तो फसल उग जाएगी। सेम सारा प्रोसेस इस्तेमाल करें लेकिन सीजन ना हो, वो मौसम ना हो, तो चावल नहीं उगेगा। और यही मिसाल आप जितनी मर्जी इलैबोरेट कर लीजिए। हिकमत का तकाजा है कि आप सही वक्त सही जगह नीड ऑफ द आवर को देखकर खर्च कीजिए। और याद रखिए शर्मे खैर है, अल्लाह सुभान व तआला ने दीन इस्लाम को बड़ा ही खूबसूरत बनाया। मैं अक्सर सोचती हूँ कि कई चीजें जिसको हम अपने लिए एक बोझ समझ होते हैं वो कैसे खैर बनती हैं। जब आप इस दुनिया की जमीन पे कोई खर्च करें, नियत हो कि मैंने पौधा आखरत की जमीन पे लेना है, ये है हिकमत का वो खूबसूरत तरीका। लिखिएगा एक जुमला दलील और देखिएगा इसके कितने जेम्स बन के अभी थोड़ी देर में ही आ जाते हैं। पारा सुनने के दौरान स्टूडेंट्स कुछ भी शेयर नहीं करेंगे, सिर्फ सुना करें। अल्हम्दुलिल्लाह ताजीसे नेमत है, हजारों की तादाद में डेली फीडबैक आ रहा है आजकल दौरे कुरान का, हर स्टेशन से। सब तो देख ही नहीं पाता इंसान, लेकिन दौरे कुरान के दौरान ना आप बैठकर इस वक्त अब स्लाइड बना रहे हैं, ना आप आगे पोस्ट कर रहे हैं, अगला मिस हो जाएगा, ये काम बाद का है। तो ये भी हिकमत है। कब खत आप लोगों की हिदायत के लिए बनाते हैं ना, कि आपके एक स्लाइड देखकर किसी को पता चल जाए कि आपने इतनी अच्छी बात सीखी है, शायद वो भी इससे फायदा उठा ले, लेकिन ये काम सुनने के बाद होगा। दूसरी बात यह हिकमत का तकाजा है कि इस फानी दुनिया पर खर्च करने की बजाय उस अबदी जिंदगी के लिए जमा कीजिए। हजरत ईसा का एक बड़ा खूबसूरत कौल किताबों में आता है, कहते हैं कि लोगों इस जमीन पर खर्च करने से बचो, क्योंकि यहां तो चोरी का खतरा भी है और दीमक भी लग जाती है। खर्च करना है, जमा करना है, तो आसमानों के पार जमा करो जहां ना तो चोरी का खतरा है और ना वहां दीमक पहुंच सकती है। इंसान अल्लाह से ये हिकमत मांगे, कि ये काम मैंने कब करना है। फिर आप देखिए जरूरत, नीड ऑफ द आवर क्या है। पिछले साल कोरोना वायरस का आगाज था और बहुत सारे लोग मेंटली प्रिपेयर्ड भी नहीं थे। वेस्टर्न कंट्रीज में तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कंपनसेट करती है, हमारे मुल्कों में अभी इस तरह के मामले नहीं है। हंगामी बुनियादों पे राशन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, दो ही मुल्कों को हम लोगों ने एडवर्टाइज किया था क्योंकि हमारे अपने साथी मोस्टली इन्हीं दो में है और वहीं जाकर मनी जा सकती थी, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात कहकर आगे ले जाऊं, मैं बजाते खुद जिस चीज को देखती हूं वो पाकिस्तान, और पाकिस्तान में भी राशन फंड का 80% हिस्सा हमारे न्यू बॉर्न बेबी कह लें या नौमलूद बच्चे जोहराबाद में हुआ था। मैं आज तक उसके असरात देख रही हूं। हमारे साथियों के पास लिस्टें हैं इसकी बातें करने के लिए कि जिन जिन बस्तियों में घरों में जाकर पिछले साल राशन बांटा, अब वहां कुरान की क्लासें शुरू हो चुकी हैं। उस आटे की बोरी, चावल की बोरी ने उन गरीबों को जिनके पास रक्षे के किराए के पैसे नहीं है उनको कुरान से जोड़ा हुआ, और वो दिन और आज का दिन खैर सिमट ही नहीं रही। तो याद रखिए ये हिकमतें, आपकी ज़कात, आपका खर्च जो आपने आगे सोचना है, द बेस्ट मसरफ के दें पैसा और लोग उसे इल्म लें। पेट की भूख बहुत सारे बुझाते हैं, दुनिया में हजारों फाउंडेशन से ऑनलाइन पे भी आप अपनी ज़कात दीजिए, खदका दीजिए, वो देंगे, देते हैं, आप किसी भी शक ना किया करें। कोई इतना अल्लाह को नहीं छोड़ा होता कि आपके ज़कात के माल से जाकर उसने होटल में खाना खाना है, ऐसा नहीं होता। लेकिन याद रखिए, आपके दुनिया के पैसे से कोई आखिरत की हिदायत खरीद ले, इससे बेहतरीन कोई मामला नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे खुद अपना भी शरा सदर और अमल भी है। एक एक पैनी पैसी हर उस प्रोजेक्ट पे डाल देती हूँ कि जिसमें आगे लोगों को हिदायत से जोड़ना है, क्योंकि हिदायत ही है वो चीज जिसके बाद लोगों को हलाल और हराम का फर्क पता चलता है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हम सही जगह ढूंढ कर सही जगहों पे इसको खर्च करें। फिर आप देखिए कि पैसा ही नहीं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, कहीं जगह बनती हैं, कहीं कुछ, ये सारी चीजें इंसान अपनी जिंदगी में देखता है। मैंने तो ये देखा है, माले मुफ्त दिले बेरहम, जिस चीज पे आपका अपना वक्त और अपना पैसा लग जाता है ना, उसमें आपका दिल पड़ जाता है, फिर आप उसको कम से कम अपनी जिंदगी में जाया होता नहीं देख सकते। अब आगे एक ऐसे खूबसूरत गिरोह का तस्कर है जिसको हम असहाबे सुफा से भी कह सकते हैं रिलेट करके, जो बड़े प्यारे लोग थे, अल्लाह के नबी के पास इल्म सीखने के लिए आए हुए फुल टाइम साथी और वर्कर, कि जिनको कमाना भी आता था, जिनके पास स्किल्स भी थी, लेकिन उन्होंने अपना वक्त अपने रब को दे दिया। अल्लाह ताला उनकी बात करके आपको मुझे मोटिवेशन देते हैं कि तुमने खर्च करना है तो किन पे खर्च करो। लिल फुकरा इल्लज़ीन उख़सिरू फी सबीलिल्लाहि ला यस्ततीऊन दरबन फिल अर्द, सदकात के मुस्तक सिर्फ वो गुरबा हैं जो अल्लाह की राह में रोक दिए गए, जो मुल्क में चल फिर नहीं सकते। नादान लोग इनकी बेसवाली की वजह से इन्हें मालदार ख्याल करते हैं। आप इनके चेहरे देखकर क्याफे से इनको पहचान लेंगे, वो लोगों से चिमट कर सवाल नहीं करते, यानी दे आर नॉट बेगर्स। तुम जो कुछ माल खर्च करो तो अल्लाह ताला इसका जानने वाला है। जो लोग अपने मालों को रात दिन खुले छुपे खर्च करते हैं, इनके लिए इनके रब्बे ताला के पास अजर है और इन्हें कोई खौफ और गमगीनी न होगी। क्या पता चला, ये वो लोग हैं जिनका प्रोफेशन नहीं पैशन दीन है। हर दौर में ऐसे लोग रहे। याद रखिए, जैसे आपको फुल टाइम डॉक्टर्स की जरूरत होती है, सिर्फ पार्ट टाइम डॉक्टर्स के साथ काम नहीं चलता, आपको फुल टाइम सियासतदानों की जरूरत होती है, फौज की जरूरत होती है। दीन का काम अगर आप अपनी सहूलत के वक्त से करें, चलो एक घंटा है मैं दे दूं, ये है हिदायत की तरफ बढ़ते हुए पहला कदम। आज अगर आप मेरी इस बात को सुनकर दिल में तड़प लाती हैं कि मुझे भी कुछ करना है, बिस्मिल्लाह, जाइए वेबसाइट से वॉलंटियर फॉर्म लीजिए, फिल कर दीजिए। पूरे महीने में आप सिर्फ एक घंटा अल्लाह के लिए डिवोट कर सकते हैं, बिस्मिल्लाह, ये तो आपका काम है। इसी तरह कुछ लोग 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, लेकिन कुछ लोगों को फुल टाइम डिवोट करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी के साथ जो साथी थे उनमें से अक्सर ही अपने वक्त को मैनेज करते। हजरत उमर अपने खंसाए के साथ बारी लेते थे, जिस वक्त वो नबी की महफिल में इल्म ले रहे होते तो वो जाकर कुछ दुकान पे काम कराते, और इसी तरह फिर वो आते और फिर एक दूसरे के साथ म्यूचुअली शेयर करते थे। लेकिन कुछ लोगों ने सब कुछ छोड़कर अपने आप को अल्लाह के लिए लगा दिया, जहां फरमाए उन पे खर्च करो, क्योंकि अगर दीन का काम सिर्फ पार्ट टाइम करेंगे तो पांच वक्त मस्जिद में कौन नमाज पढ़ाएगा? इमाम साहब को भी कमाना है, उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी जरूरियात हैं। तो जरूरत है इस बात की कि ऐसी जगहों पे माल लगाया जाए जहां फुल टाइम काम होता है। मुझे दो तीन दिन पहले सिस्टर्स का मैसेज आया, इंतहाई मसरूफियत के बावजूद भी उन्होंने कहा आप 10 मिनट के लिए हमारी मीटिंग में आ जाए। और वो मीटिंग आपको पता है किससे मुतल्लिक है? थी होस्टल, होस्टल, होस्टल। इस वक्त जोहराबाद के इर्द गिर्द एक ही जुमला है, होस्टल चाहिए। बाहर से बच्चियां आई हैं, बच्चियां चाहती है, पेरेंट्स, माँ बाप, बच्चे। अब आप सोचिए कि ये कोई आसान काम है, रहना, रखना, फिर एक एक चीज की टेक केयर। क्या इस पे मीन्स नहीं लगते, इस पे वक्त नहीं लगता? तो वो लोग जो अपनी जिंदगियां पहले ही खपा चुके हैं, वो और खपाने को पूरी तरह तैयार है। दीन के काम दूर रह के नहीं होते। आज सुबह हमारी एक बहुत ही प्यारी साथी का मैसेज था, जरूरियात की वजह से क्योंकि दूर रहकर काम नहीं होता, तो पिछले महीने वो फिर आपके इंस्टीट्यूट के साथ ही मूव हुई है। तो मैं सोच रही थी कि कितनी परेशानियों से गुजरी होंगी, लेकिन उनके लफ्जों में जो सुकून मैंने आज सुबह महसूस किया, उन्होंने कहा कि जिस दिन से इदारे के अंदर आकर बैठी हूं, खुशियों के दरवाजे खुल गए। ये आसान नहीं होता। जहां यादें होती हैं, जहां प्यार होता है, जहां बंदा शादी होके आता है, जहां बूढ़े माँ बाप के साथ रहता है, लेकिन अगर दीन को मैं और आप ये कुर्बानियां नहीं देंगे और ये छोटी छोटी हिजरतें नहीं करेंगे तो दीन के पौधे पे बहार नहीं आएगी। मैं अपने आप को लेकर सोचती हूं कि अगर मैं नॉर्वे में ना बैठती तो मेरे लिए कोई जवाब नहीं था यहां बैठने का। ये अल्लाह के फैसले होते हैं, इसको दिल की खुशी बनाया करें। तो आप और मैं जहां भी हैं, जिस लेवल पे भी हिदायत के एतबार से काम करें, अपना गोल बनाइए। इट्स माई पैशन, इट्स नॉट माई प्रोफेशन। ये मेरी दुकानदारी नहीं है, ये मेरी दीनदारी है। ऐसे लोगों का जिम्मा फिर अल्लाह उठाता है, और फिर वो जब उठाता है तो फिर उसको कूते ला यमूत पे रखिए। फिर ये नहीं कि एक ही जगह 10 खर्च कीजिए कि माले मुफ्त दिल पे आ रहा है। अल्लाह ताला ने हमें ये हिकमतें इसमें सिखाई। यहां तक तो हमने पढ़ी है अच्छी अच्छी चीजें। अब आगे 275 से 279, इससे बिल्कुल ऑपोजिट, अपसाइड डाउन। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की बातों के बाद अब वो बात जिसका तस्करा करते हुए भी इंसान दुख महसूस करता है, और अफसोस के साथ कहूंगी कि आज की सदी में जो गुजर रही है, पिछली सदी के साथ से लेकर अभी तक में, इसको खून की तरह मुआशरों में फैला दिया गया, जिसको अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अल्लज़ीना याकुलूनर रिबा, रिबा। तो लिखिए सूद इन्फाक की जिद है। अब इस मौजू पे कुछ आयात और फिर थोड़ी सी इस पे हम बात करेंगे, ज्यादा नहीं। आयत 275 टॉपिक है सूदी लेन देन खर्च की बदतरीन किस्म है। अल्लज़ीना याकुलूनर रिबा, सूदखोर लोग ना खड़े होंगे मगर इस तरह जिस तरह वो खड़ा होता है जिसे शैतान छूकर खपती बना दे। ये इसलिए कि ये कहा करते थे कि तिजारत भी तो सूद ही की तरह है, हालांकि अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल किया और सूद को हराम। जो शख्स अपने पास आई हुई अल्लाह ताला की नसीहत सुनकर रुक गया, इसके लिए यह है कि जो गुजरा और इसका मामला अल्लाह ताला की तरफ है, और जो कोई फिर दोबारा हराम की तरफ लौटा वो जहन्नमी है। ऐसे लोग हमेशा इसमें रहेंगे। अल्लाह ताला सूद को मिटाता और सदके को बढ़ाता है, और अल्लाह ताला किसी न शुक्रे और गुनाहगार को दोस्त नहीं रखता। बेशक जो लोग ईमान के साथ सुन्नत के मुताबिक नेक काम करते हैं, नमाजों को कायम कर रखते हैं, नमाजों को कायम रखते हैं और ज़कात अदा करते हैं, इनका जरीन के रब ताला के पास है, इन पर ना तो कोई खौफ है, ना उदासी और ना गम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, और जो सूद बाकी रह गया है इसको छोड़ दो अगर तुम सचमुच ईमान वाले हो, और अगर ऐसा नहीं करते तो अल्लाह ताला और उसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ अगर तौबा कर लो तो तुम्हारा असल माल तुम्हारा ही है, ना तुम जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाए। यह आखिरी जुमला जो अक्सर ओवरलुक हो जाता है क्योंकि आयत इतनी स्ट्रांग है, और यकीनन जिन साथियों ने दिल के कानों से तर्जुमा सुना है, सिर्फ तर्जुमा ही काफी है। मैं तो एक भी ना लफ्ज बोलूं तो भी काफी है कि सूद का इस्लाम में क्या मुकाम है, इसको कहाँ रखा गया। लेकिन ये जो आखिरी जुमला है ना, ये है इस्लामिक इकोनॉमिक्स की जड़, रूट कॉज, वो फाउंडेशन जिस पे इस्लाम में इकोनॉमिक्स चलती है वो क्या है कि ना तुम किसी पे जुल्म करो और ना कोई तुम पर जुल्म करे। ला तुज़लिमून ना वला तुज़लमून, और सूद का मामला इसकी ऑपोजिट है। माल के बदले माल और बेचारे गरीब की गुर्बत या उसकी जरूरत के बदले और जरूरत पड़ती है। और आप इन आयात को अगर देखें, उलमाए कराम का इसमें इत्तफाक है कि अल्लाह के मामलात में, हकूकुल्लाह में जो मुकाम शिर्क का है, इंसानी मामलात में वो मुकाम सूद का है। यहां थोड़ी सी वजाहत कर दूं, चूंकि हम कुरान पाक को अभी शुरू करके बैठे हैं, ऐसे लग रहा है कि ये आयतें शुरू में आ गईं, हालांकि तरतीब नजूल के एतबार से ये सबसे आखिर में उतरने वाला मुकाम है कुरान का, जो सूद से मुतल्लिकात है। 9 हिजरी में ये आयात आखिरी बार सूद की हुरमत के लिए नाजिल हुई थी, और इससे पहले कुरान पाक में जितनी भी आयात हैं, और आप हैरान होंगे कि सूद वो लफ्ज है जिस पे लफ्ज हराम आपने पढ़ लिया, अल्लाह रसूल से जंग की बात पढ़ ली, अल्लाह उसको मारना चाहता है, खत्म करता है, इसको पढ़ लिया, और सूद खोर का क्यामत के दिन तो छोड़िए कब्र से निकलती बुरा अंजाम भी पढ़ लिया, इसके बावजूद आज भी कुछ लोग कहते हैं किधर किधर है सूद। 40 हदीसें हैं इस पे सही दर्जे की, और तकरीबन 7 आयतें पूरे कुरान में जो हम पढ़ेंगे। चूंकि अभी आप तो हिदायत की तलब लेकर आए हैं, तो मैं फिर कहूंगी मेरे वो प्यारे साथी जो अभी सिर्फ हिदायत की तलब के साथ इसको सुन रहे हैं, वो तो बिल्कुल फिक्र ना करें, बस दुआ कर दें कि अल्लाह हमें ऐसी तमाम चीजों से पाक कर दे जिसने हमारी रातों की नींद बर्बाद की हुई है, हमें बीमारियों में मुब्तला किया हुआ है, हमारी औलादें हमारी नाफरमान हो गई हैं। ये 3 जुमले मैंने उंगलियों पे गिने, आप भी लिख लें बेशक। सूद का ये अल्टीमेट नतीजा है औलादों की नाफरमानी और दिल से गम का जाना ही ना। आपने इन आयतों में एक जुमला गौर से सुना होगा तो वो आपको अभी मेरी बात समझने पे तैयार कर देगा, और वो क्या है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहसनून। सूद के मामले के साथ ही जो चीज खत्म हो जाती है ना, वो आपकी जिंदगी का सुकून है, इत्मीनान है। हर दिन तो वो बच्चा पल रहा है, और लोग कहते हैं कि सूद नाजायज बच्चा है, पलता ही जा रहा है, एक महीने किस्त ना दे अगले महीने वो 1 पॉइंट कुछ और के साथ लग जाएगी, जिंदगी से खौफ चला जाता है। आज भी वही बंदा टेंशन फ्री रिलैक्स्ड है जिसपे एक पाई नहीं एक पैनी का सूद हो। और जहां मैं आप सबको गवाह बनाकर बताती हूँ, जिस स्कूल से मैं इस वक्त आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ और पूरी दुनिया से आप सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल पहले अल्लाह ने हमें ये जगह दी, और बिल्कुल हम उस वक्त नए थे इस शहर में, और हमेशा की तरह जो भी चीजें ऑफर होती हैं उसमें लोग बैंक से लोन लेते देते ना, कोई हमारे पास इतनी लंबी कहानियां थी जो अब अल्लाह की रहमतों से बन चुकी हैं, कोई हिस्ट्री नहीं थी हमारी, लेकिन ये जगह हमने बगैर किसी इंटरेस्ट के लिए कैसे ली, ये मौका नहीं है बात करने का, जो बात याद आ गई वो बता दूं। पेमेंट करने में कोई एक ऐसी पेमेंट थी जिसमें बीच में सैटरडे या संडे आ गया था, और पेमेंट उनको मंडे को मिली जस्ट, जिसकी वजह से मुझे अब याद नहीं है, लेकिन फ्यू क्रोन्स मे बी पेनीस इंटरेस्ट लगाकर उन्होंने हमें बाद में भेजा। तो हमारे साथियों ने हमने कहा नहीं देना, क्यों भाई क्या हुआ, ये इतनी है। मुझे वो जुमले याद आते हैं कि जो भी इस मामले में बात हुई, उन्होंने वो जो बंदा था उसने कहा आई कैन पे फ्रॉम माई पॉकेट। आप लोग इतनी बड़ी जगह लेकर, इतने मिलियंस की जगह लेकर आप सिर्फ 50p की बात करें, तो उन्हें कहा था कि बात 50p नहीं है, बात यह है कि हमें नहीं देना, इट्स नॉट अलाउड इन आवर रिलीजन। यकीन करें ये मेरे लिए उनकी भी बैंक वालों की हिस्ट्री का पहला वाकया होगा कि उन्होंने कहा कि छोड़ दे कोई बात नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपने हर चीज कैश पे लिए। भाई ये नहीं कि हमारे पास पैसे थे, ये था कि हमें उस तरह नहीं लेना। अल्लाह ने आज तक बचाया और अल्लाह क़यामत तक बचाए रखे, और अल्लाह हर जगह को इस पानी से बचा ले, बेबरकती है, दिल की बेचैनी है, अल्लाह ताला ने इस सारे मामलात को रखा। फिर आप देखिए कि आपके सामने एक बड़ा खूबसूरत फ्लो चार्ट है, सूदी लेन देन खर्च की बदतरीन किस्म है, और क्यों ना हो, अल्लाह ताला ने जब कह दिया कि अल्लज़ीन याकुलून अर्रिबा ला यकूमून इल्ला कमा यकूमुल्लज़ी यतखब्बतुश शैतानु मिनल मस। सूदखोर दुनिया में माल की हवस में भाग रहा होता है ना, तो उसको उधर भी यही कुछ होगा, वहां कब्र से भी निकलते वक्त उसका मामला कुछ इसी किस्म का होगा। फिर देखिए कि तिजारत वर्सेस सूद, इसमें भी आपने जुमला सुना, आज भी लोग बोलते हैं, मैं आज इससे ज्यादा बात करना नहीं चाह रही सच्ची जो बात है, क्योंकि अभी आगे आएगा तो देखेंगे, अभी तो आप शुरू नहीं हुए, आगे जाकर थोड़ी थोड़ी बात होती रहेगी, इस पे हदीस भी बहुत सारी हैं। लेकिन एक जो मिथ दी जाती है कि देखो कारोबार भी तो करते हैं ना, तो बिजनेस और सूद में फर्क क्या है, तो नोट कीजिए, तिजारत एक मुफीद काम है। कितने लोगों को बिजनेस मिलता है, कितने बेचारे मजदूरों को दिहाड़ी मिलती है, मार्केट में प्रोडक्शन आता है, घरों से मट जाते हैं तो पुरसकून हो, घर का माहौल होता है, थोड़े घंटे के बाद वापस घर आए तो शौहर बीवी बच्चे मियां बीवी बच्चे सब एक खूबसूरत फैमिली बॉन्ड बनता है। इसके बरक्स वो लोग जो अपना थोड़ा बहुत माल कहीं सूद पे लगाकर बैठते हैं, सबसे पहले तो घरों में झगड़े, बीवी को अच्छा नहीं लगता एक मर्द सारा दिन सर पे सवार हो, ये फितरत का असूल है, वो किसी वजह से घर से कुछ घंटे बाहर जाएगा तो सुकून होगा, और इसी तरह बीवी अगर सारा दिन बाहर रहेगी और घर में दो घंटे के लिए आएगी तो भी बेसुकूनी होगी, अल्लाह ने फितरत के तरीके में सिखा दिए। तो सूद के साथ जो एक मामला पड़ता है वो ये है, बेकारी, फिर ऐसे लोग गलत चीजों में आए, कोई चेस खेलने लग जाएगा, कोई कुछ, और भी इसके बहुत से नुकसान है। फिर आप देखिए कि तिजारत माशरे के इक्तसादी तवाजुन की जमानत है, फ्लरिश करती हैं वो कम्युनिटीज, वो इदारे, वो जगह जहां काम होता है। इसके बरकसूद क्या है, फाज़नु बिहर्ब मिनल्लाह व रसूली, फिर अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग या लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। तो जरूरत इस बात की कि आज के दौर का ये जिहाद है, अल्लाह के नबी की बात जो सच हो गई उसको आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो फाज़नु बिहर्ब मिनल्लाह व रसूली की बजाय हमें इस सिस्टम के साथ अपने आप को अलग करना है, और आज हिदायत की तरफ बढ़ते दिल के साथ नियत कीजिए, नो मोर सूद। लोग कहते हैं देना नहीं लेना, लेना नहीं देना, ये तो इंतहाई ना समझी की बात है। कोई कह दे कि जिना करना नहीं करवाना बुरा, करना है बुरा तो करवाने में तो कोई हर्ज नहीं, तो जब लेंगे तो कोई देगा, देना और लेना दोनों है, और इस पे हदीस इंशाल्लाह आगे कहीं जाकर चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, 280 आयत है। पहले खर्च की किस्मों में क्या देखा, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, बहुत प्यारा अमल, एक को 70,000 में बदलने वाला। फिर देख लिया सूद, यानी बज़ाहर बढ़ोतरी लेकिन वो गिल्टी है, रिबा का लफ्ज एक ट्यूमर के लिए आता है, वो ग्रोथ नहीं होती बल्कि वो असल सेल्स का खून भी निचोड़ती है। अब तीसरी चीज, तंग दस्त को मोहलत देना, यानी कर्ज दे दो विदाउट इंटरेस्ट, लोन लेने देने को इस्लाम बहुत रिकमेंड करता है। आइए देखते हैं, वइन कान ज़ू उसरतिन फ़नज़िरतुन इला मैसरा, वइन कान ज़ू उसरतिन फ़नज़िरतुन इला मैसरा। और इसी के साथ आगे आप देखेंगे तो आयत 281 का भी टॉपिक लिख लीजिए, आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। ये है कुरान पाक की आखिरी आयत तरतीब नज़ूल के एतबार से, देखिएगा। और अगर कोई तंगी वाला हो तो इसे आसानी तक मोहलत देनी चाहिए, और सदका करो तो तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है अगर तुम्हें इल्म है, और उस दिन से डर जाओ जिस दिन तुम सब लोग अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, और हर शख्स को इसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, और इन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। लोगों को कर्ज दीजिए और फिर सहूलत भी दीजिए, मोहलत दीजिए, हर दिन उतना कर्ज देने का अजर मिलेगा, सदका करने का अजर मिलेगा, आपकी चीज आपको वापस मिल जाएगी बाद में और अजर के साथ मिलेगी। यह है जायज तरीका जिसको अल्लाह अजर रिप्लेसमेंट बयान करता है सूद की आयतों के बाद। फिर इसके बाद आयत नंबर 282, अब ये नेक्स्ट थिंग है खर्च के मामलात में, और वो इसको कहते हैं आयते दैन। ये है वो एक और नगीना जो इस सूरत के हिस्से में आपको बड़ा प्रोमिनेंट सा दिखता है कि सूरत अल बकरा का ये हिस्सा इतना अहम क्यों है। तवील तरीन आयत है कुरान पाक की और आयते दैन है। हैरत की बात देखिए इंसानी मामलात को, और खास तौर पे फिर माली मामलात को इस्लाम कितनी अहमियत देता है, कितनी नुमाया जगह पे अल्लाह ताला ने ये बोर्ड लगाया। और ये पांच आयते जो है ना, ये मुझे ऐसा लगता है बाय फाइव ब्रिटेन बोर्ड है पूरी सूरत बकरा में, जो दूर से नजर आ जाते हैं। आइए इनको पढ़ते वक्त जरा हम भी अपनी इस्लाह की कोशिश करें। या अय्युहल्लज़ीन इज़ा तदायन्तुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा फ़क्तुबूह। ऐ ईमान वालो, जब तुम आपस में एक दूसरे से मियाद मुकर्रर पर कर्ज का मामला करो तो इसे लिख लिया करो, और लिखने वाले को चाहिए कि तुम्हारा आपस का मामला अदल से लिखे, कातिब को चाहिए कि लिखने से इनकार न करे, जैसे अल्लाह ने इसे सिखाया है, बस इसे भी लिख लेना चाहिए, और जिसके जिम्मे हक हो वो इसको लिखवाए, और अपने अल्लाह ताला से डरे जो इसका रब है और हक में से कुछ घटाए नहीं। हाँ, जिस शख्स के जिम्मे हक है वो अगर नादान हो या कमजोर हो या लिखवाने की ताकत न रखता हो तो इसका वली अदल के साथ लिखवाए, और अपने में से दो मर्द गवाह रख लो। अगर दो मर्द न हो तो एक मर्द और दो औरतें जिन्हें तुम गवाहों में से पसंद कर लो, ताकि एक की भूल चूक को दूसरी याद दिला दे, और गवाहों को चाहिए कि वो जब बुलाए जाएं तो इनकार न करें, और कर्ज को जिसकी मुद्दत मुकर्रर है हो छोटा हो या बड़ा लिखने में काहली न करो। अल्लाह ताला के नज़दीक ये बात बहुत इंसाफ वाली है और गवाही को भी दुरुस्त रखने वाली है और शको शुबे से भी ज्यादा बचाने वाली है। हाँ, ये और बात है कि वो मामला नकद तिजारत की शक्ल में हो जो आपस में तुम लेन देन कर रहे हो, तो तुम पर इसके न लिखने में कोई गुनाह नहीं। खरीदो फरोख्त के वक्त भी गवाह मुकर्रर कर लिया करो, और याद रखो कि ना लिखने वाले को नुकसान पहुंचाया जाए और ना गवाह को, और अगर तुम ये करो तो ये तुम्हारे लिए खुली नाफरमानी है। अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह ताला तुम्हें तालीम दे रहा है और अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानने वाला है। ये है जी कर्ज की बात, आयत 282। इज़ा तदायन्तुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा इलाजलिम मुसम्मन फक्तुबु, छोटी बात हो या बड़ी उसको लिख लो। तो कर्ज खर्च की तीसरी किस्म है। क्या रूल्स लिखे? पसंदीदा अमल है। कर्ज थोड़ा हो या ज्यादा इसकी मुद्दत लिखनी चाहिए कि वापसी कब होगी। कर्जदार मजमून लिखने के काबिल ना हो तो वली इमलाह करवाए, यानी किसी बच्चे का मामला है या कोई नासमझ बच्चा है, कोई मेंटली रिटार्ट है, तो कोई दूसरा उसकी जगह पे पावर ऑफ अटॉर्नी लेगा। यहां से आप थोड़ी सी बात समझिएगा, भाई बहनों में खास तौर पे, और उसी से निस्बत करके हर वो जगह जहां प्यार होता है और मोहब्बत होती है, बहुत सारे मामलात में लिखत पढ़त नहीं की जाती, और नुकसान बाद में क्या होता है, कहीं ना कहीं कोई गलतफहमी होती है, इससे बचिए, लिखिए। आप किसी को 1,00,000 रुपया पाकिस्तान में दे दें, लिख लीजिए एक माह बाद, दो माह बाद, और दूसरी शर्त जाए कि किसी को गवाह बना लें। एक मर्द हो जाए तो काफी है, एक मर्द ना मिले तो दो औरतें, क्योंकि औरतें बेचारियां और बहुत कुछ याद रख रही होती हैं, फेशियल कब कराया था, प्लकिंग कब करानी है, और वैसे भी बच्चों के पालने पैदा करने में मेमोरी लॉस होता है, तो अल्लाह ने कहा कि एक मेज अकेला मर्द उठाता है तो दो औरतें मेज को मिलकर उठा लें, तो गवाही को हक नहीं। जिसको बुनियाद बना के कितनी अजीब गरीब बातें करके इस्लाम का मजाक उड़ाया, और औरत की अगर गवाही आदि तो नमाजें भी आदि, ये फजूलियात होती हैं। इसका मतलब यह कि हिदायत की तरफ कदम नहीं बढ़े हुए। लेकिन अपने लिए अमल की बात लिखिए, बी रियलिस्टिक। अगर आप चाहते हैं ना कि आपका किसी से मामला ना बिगड़े तो माली मामलात में लिखत पढ़त कीजिए, और जहां पैसा आएगा वहां ताल्लुक जरूर बिगड़ेगा। शोहर बीवी के 80% झगड़े हमारे मुल्कों में पैसों की वजह से होते हैं, या बीवी बहुत फजूल खर्च होती है तो, या मर्द साहब जरा दिल के तंग होते हैं, तो ऐसी चीजों में लिखिए। लोग कहते बुरा लगता है, बुरी बात है, घर की बात है। भाई घर की बात नहीं, अल्लाह की बात है। अब इसके बाद चौथी और आखिरी किस्म, रहन। यानी देखिए जरा सा रब जोड़ू आपका, आप अगर मेरे साथ ही हैं, सदकात को आम कर दो, पैसे वाले अपना एक्स्ट्रा माल खर्च करें। और पिछली आयत याद कीजिए, पिछले पारे में, या सलूना का माज़ युनफिकून में, दो दफा सहाबा ने पूछा था क्या खर्च करें, एक दफा कह दिया लफ। ये है सबसे आला दर्जा, और अल्लाह के नबी ने अपने लिए यही इस्तेमाल किया था कि जरूरत से ज्यादा सब कुछ खर्च कर दो। और दूसरा दर्जा ज़कात। लेकिन ये जुमला कल नहीं बोला था, आज बोल रही हूँ। खर्च करने में क्या हुक्म है? अदना से अदना यह कि कम अज कम अपने माल की ज़कात तो दो। एक साल जो माल तुम्हारे पास पड़ा रहा एंड ऑफ द ईयर, उसके ऊपर ज़कात दे दो। और ज्यादा से ज्यादा क्या दी मैक्सिमम, अपनी जरूरत रख लो, बाकी सब दे दो। नबी सल्लम ने इस पे अमल किया, सारी जिंदगी ज़कात नहीं दी आपने, जरूरत ही नहीं पड़ी। एक साल तो बड़ी बात है, एक दिन उनके घर में सोना चांदी नहीं रहा, तो आपके मेरे लिए ये हुक्म। ये नहीं जायज कि आप सब देकर तो आप सड़क पे बच्चों को खड़ा कर लें और बैगिंग करें कि जी हम अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के नाम पे या अल्लाह की तरफ से आए हैं। ये इस्लाम को गलत तरीके से प्रेजेंट करने वाली बात है। जब ये असूल मुआशरों में चलेगा तो मुआशरा होगा खुलफाए राशिदीन का मुआशरा। उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में ज़कात का माल ले जाकर ढूंढते थे किसको दें, और उमाल ने आकर जब खबर दी अपने खलीफा को कि किसको दें, कहा बेवाओं को दे दो, कहा जरूरत ही नहीं, गरीबों को दे दो, यतीमों को दे दो, फलां को, कैदियों को, कहा या खलीफतुल मुस्लिमीन कहीं नहीं जरूरत, सब इजीली यूज कर रहे हैं। अच्छा जाओ इस पैसे का दाना लो, पहाड़ों पर डाल दो, परिंदे खा जाए। ये है इस्लामिक इकोनॉमिक्स। आज हम ओवरऑल इस्लामिक टेररिज्म का शिकार है। कुछ लोगों के हाथों में सारी दुनिया की दौलत, और वही असूल बनाते और जाब्ते मुकर्रर करते हैं। जब फ्लरिश करेंगे सदकात खैरात को तो दुनिया में कोई गरीब नहीं होगा। ये थर्ड वर्ल्ड और अफ्रीका और इधर के उधर के मुल्कों की गुरबत सिर्फ इसलिए कि हम मुसलमानों ने इस्लाम नहीं दिया। सेकंड, उसका अपोजिट वे सूद का मामला, जिससे आज बाजार बड़ी तरक्की दिखती है लेकिन ये घुन है, अंदर से खोखली है वो चीजें जिसके अंदर ये इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम है। आज अपने लोगों ने, यानी हम मुसलमान तो इस्लाम की बात करते हैं ना, सवाब गुना इसको पीछे कीजिए, जिन्होंने ये सारा कुछ इंट्रोड्यूस करवाया वो इसको खत्म कर रहे हैं, क्योंकि ये इतना अननेचुरल है, क्योंकि ला तुज़लमून वला तुज़लमून। अगली चीज, सूद नहीं लेना, कर्ज ले लो। अब कर्ज भी कोई नहीं देता, आप कहते हैं आज देता कौन है। पहले लोग सुनाना शुरू हो जाते हैं जी हमारे कारोबार नहीं अच्छे, तो अब आखिरी सूरत क्या है, कुछ देकर गिरवी में कुछ रखो और उसके बाद तुम ले लो उससे कुछ। वइन कुंतुम अला सफरिन वलम तजिदू कातिबन फरिहानु मकबूजा, अगर तुम सफर में हो और लिखने वाला ना पाओ तो रहन बिल कब्जा, यानी रहन कब्जे में रख लिया करो। हाँ, अगर आपस में एक दूसरे से मुतमईन हो तो जिसे अमानत दी गई है वो इसे अदा करे, और अल्लाह ताला से डरता रहे जो इसका रब है, और गवाही को ना छुपाओ, और जो इसे छुपा लेगा वो गुनाहगार दिल है, वो गुनाहगार दिल वाला है, और जो कुछ तुम करते हो इसे अल्लाह ताला खूब जानता है। तो गोया के फिर इसमें रहन की बात हुई, तो आपके सामने है फ्लो चार्ट। रहन खर्च की चौथी किस्म है। वलम तजीदु कातिबन फरिहानु मकबूदा, माली मामलात को अदलो इंसाफ से लिख लेना चाहिए। तहरीर और गवाह इख्तलाफ में, अगर हकीकत को यानी तहरीर की सूरत में और गवाही की सूरत में अगर कोई इख्तलाफ हो तो हकीकत को सही तौर पे बयान करना चाहिए। यहां देख रहे हैं 283 में अलकलबुल आसिम का तस्करा हुआ। क्या है इसकी दो अलामतें, वमई यक तुम हा फिन नहुआसिमुन कल्बुहू, नंबर एक शहादत को छुपाने वाला, और नंबर दो अमानत में खयानत करने वाला। तो यहां पे अल्हम्दुलिल्लाह सूरत बकरा की तकमील से पहले खर्च की चार मुमकिना सूरतों को हमने पढ़ लिया। ये सारा मजमून कितनी आयतों पे मुहित था, 261 से 283। आप इकट्ठी करें ना तो एक छोटा सा बुकलेट बनता है। अल्लाह को इंसानों के माल की इतनी फिक्र है, अल्लाह को अपने बंदों की जरूरियात का इतना फिक्र है, और इतनी ज्यादा आयतें आपको किसी और इबादत की नहीं मिलेंगी। खुलासा कर लेते हैं, अल बकरा 261 अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की बात थी, अल बकरा 275 सूदी लेन देन की बात थी, 282 सूद नहीं लेना तो कर्ज ले लो, और 283 है कि कोई कर्ज भी नहीं देता तो चलो फिर रहन में कुछ रख दो, अपनी घड़ी दे दो, अपनी चूड़ी दे दो, और उसके बदले में चीज ले लो, पैसे ले लो, बाद में पैसा देकर चीज को वापस करा दो। इससे ज्यादा खोल खोल कर हमें कौन पढ़ाएगा। बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की किताब हिदायत की तरफ बढ़ते हुए कदमों के लिए, और उस शख्स के लिए जो वाकई अपने आप को सुधारना चाहता है, एक बेहतरीन आईना है। अब यहां हम अल्लाह की तौफीक से सूरत अल बकरा के आखिरी हिस्से पे आ गए, आयत 284 से 286 आखिरी दो आयतें, जिसको अर्श का खजाना कह सकते हैं आप। पूरा कुरान जमीन पे नाजिल किया गया और ये आयत आसमान पे, क्यों? इसलिए कि दीन हक के बुनियादी एतकादात का इसमें तस्करा। यहां फिर आदत है शुरू और आखिर को मिलाकर बताने की। सूरत बकरा का शुरू क्या था? الذين يؤمنون بالغيب سے ایمان کی جزیات کی بات تھی, یہاں اب اسی کو ایک اور فارم میں بتایا جا رہا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے. تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے سوچیے, اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ. يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ, اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. پھر اس کے بعد کیا ہوگا, ایک دم دل کانپ جاتا ہے. فرمایا فکر نہ کرو. فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ, پھر جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس آیت پہ کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں, تو پارے کے آغاز میں میں نے آپ کو جو قانون ہدایت بتایا اس کو ادھر سے جوڑ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جو خود چاہتا ہے ہدایت پانا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں. ہاں, لفظ للہ ہی کے اوپر ایک چارٹ دیکھ لیجئے, ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے. ذرا سا خود کو یقین دلائیں, ہر چیز کے اندر آپ اور میں آتے ہیں. مرتے ہی جو بات سمجھ آتی ہے وہ زندگی میں اگر سمجھ آ جائے نا کہ انی للہ, ہم کیا کہتے ہیں کسی کے مرنے کی خبر پہ, انا للہ, پچھلے پارے میں بھی پڑھ کے آئے ہیں. تو جب آپ خود کو اللہ کا سمجھیں گے تو آپ کی زندگی کا رخ بدلے گا, آپ ایک نئی شخصیت بن چکے ہوں گے, آپ کا معاملہ بالکل مختلف معاملہ ہوگا اس سے جو موجود ہے. اس بات کو پڑھنے کے بعد تین باتیں دماغ میں آنی چاہیے. نمبر ایک, ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے, تو پھر میں اپنے آپ کو با اختیار اور خود مختار کیسے سمجھوں, میری مرضی کیسے چلے گی میرے اپنے جسم پہ, میری اپنی ذات پہ. اسی طرح ہر چیز اللہ کے تصرف میں ہے, یعنی اس کا استعمال بھی اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. آنکھ ہے, دیکھے گی کب, جب اللہ چاہے گا. اور سب سے بڑی بات, آخر میں ہر چیز اس کی طرف لوٹے گی. دنیا سے جاتے ہوئے بھی انسان یہی خبر دیکھے جاتا ہے. اگلی آیت میں ایمان کی کچھ تفصیلات. سورت کے شروع میں یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ میں بات تھی, یہاں کیا ہے, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ, رسول ایمان لائے اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالی کی جانب سے اتری, اور مومن بھی ایمان لائے, یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں ہم تفریق نہیں کرتے, انہوں نے کہہ دیا ہم نے سنا اور اطاعت کی, ہم تیری بخشش کو طلب کرتے ہیں, اے ہمارے رب ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, تفریق بین الرسل کی بات ہے. تیسرے پارے کے شروع میں بھی اسی کی بات تھی, کسی ایک کو ماننا کسی ایک کو نہ ماننا. اور جب یہ آیت اتری کہ یُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ, تو صحابہ اکرم کانپ گئے کہ اللہ کے نبی, دل کی باتوں کا بھی حساب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیت اتار دی, لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا, اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. جو نیکی کرے, جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے, اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے. ربنا لا تُؤَاخِذْنَا, دعا کی طرح مانگیے, اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا, اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا, اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو, اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے, اور ہم پر رحم کر, تو ہی ہمارا مالک ہے, ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما. ابھی مدینہ میں داخل نہیں ہوئے اور دعائیں سکھائی جا رہی ہیں کہ مدینہ کو بہترین مسلم ریاست کی صورت میں ڈھال کر ہمارے حقوق کو وہاں پورا کروا دے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک نئی دعا جو آپ کی ترتیب سے چلتی ہوئی دعاؤں میں سے چھٹے نمبر کی دعا ہے, اس کو یاد کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت بھی یہ دعا یاد پڑھتے تھے, اور خاص طور پہ یہ دعائیں بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں, ساری رات اللہ کی حفاظت میں رہنے والی. اور جب ترجمہ سمجھ آ جاتا ہے تو پھر تو دل ٹھنڈا ہوتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کوئی صدمہ کوئی چوٹ ایسا نہیں ہے کہ جس کو ڈالنے سے پہلے اللہ آپ کا پریشر اور آپ کو دیکھنا لے. ہوتا یہ کہ کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو مس انڈرسٹوڈ کرتے ہیں, انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, حالانکہ ہمارے اندر بہت سی طاقت ہوتی ہے. تو ان دعاؤں کو اکیلے میں مانگیے. آپ کو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی دے سکتی ہوں خاص طور پہ اس دعا کے لیے. अपनी खताओं की लिस्ट बनाइए। देखिए, आप किसी की नजरों से खुद को देखना छोड़ दें। आपने हिदायत की तलब दिल में पैदा कर ली और मुझे यकीन है अब दिन ब दिन ये बढ़ती जा रही है। तो जब ये बढ़ गई है ना, तो बस अकेले में रब से बातें करें। किसी वक्त अकेले में, बिल्कुल, चाहे वो सनसेट का टाइम हो या सनराइज, ये दो वक्त बड़े कीमती हैं अल्लाह से बातें करते हुए। तब्दीली जो है ना, इंसान के शऊर के अंदर असर लाती है, चेंज आता है। एकदम बैठे बैठे धूप बारिश में बदल जाए तो आप एकदम फील करते हैं। तो वहां बैठकर अल्लाह से कि अल्लाह मैं किधर जा रहा हूं, अल्लाह मुझे थाम ले। बस अब इंसान दीन का काम करते करते रुक जाता है। शादी हो गई, हालात बिगड़ गए, कुछ और हो गया, वापस आ जाइए। क्योंकि ये तलब अगर आप जागे ना, तो फौरन लब्बाई कह दीजिए। फिर आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपको कितना कुछ इसमें देता है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इसके बारे में एक हदीस है, सही मुस्लिम 330, हजरत इब्ने अब्बास रावी हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई कि जो कुछ तुम्हारे दिलों में है उसको जाहिर करो या छुपा लो, अल्लाह इस पर तुम्हारी पकड़ करेगा, मुआखजा करेगा, तो सहाबा कराम ने अपने अंदर एक खौफ महसूस किया कि ये कैसे होगा। तो उस पर अल्लाह के नबी ने कहा था, कहो समेना व ताना, हमने सुना और हमने इताअत की, हमने मान लिया। तो इब्ने अब्बास कहते हैं कि इस पर अल्लाह ताला ने इनके दिलों में ईमान डाल दिया और आयत उतार दी कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी बंदे को उसकी वुसअत से ज्यादा नहीं आजमाता। तो बात यह है कि आपको मुझे भी इसी की फिक्र करनी है। जो हुक्म मुश्किल लगता है दुआ कीजिए, आसान हो जाएगा, और जो आसान लगता है उसको भड़कर करेंगे तो अगला हुक्म खुद ब खुद आसान होगा। बिल्कुल सीढ़ी पे चढ़ना मुश्किल है, पहला कदम उठा लीजिए फिर दूसरा आसान होगा। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की तवील तरीन सूरत सूरत अल बकरा पूरी हुई। हमने कितने दिन में की? तीसरा दिन है अभी। हजरत उमर फारूक ने 8 साल में और इब्ने उमर जोनी के बेटे थे 12 साल में इस सूरत को मुकम्मल किया। हम तो अभी भी शायद सोच रहे होंगे कि इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों मिल रही है। तो अल्लाह ताला हमें इसका हक अदा करने की तौफीक दे। एक खूबसूरत सूरत जब पूरी होती है ना, तो एक दूसरी अगली उससे भी खूबसूरत सूरत हमारा रास्ता देख रही होती है। जैसे कि इस वक्त सूरत आले इमरान एक दरवाजे की सूरत में आपके पास है कि आओ मुझे भी खोलो। सूरत आले इमरान कुरान पाक की तरतीब के एतबार से तीसरी सूरत है और इस पारे में, यानी पारा 3 में इसका जो हिस्सा है वो आयत नंबर 91 से 91 है। इन दोनों सूरतों के बीच में मुमासलत भी बहुत खूबसूरत है। पहली बात है कि अल बकरा और आल इमरान के मजमुए को अज़हरवईन कहते हैं, दो चमकती हुई सूरतें। क्यामत के दिन दो बादलों या दो परिंदों के झुंड की सूरत में आएंगी, रोशनी करेंगी। फिर आप देखिए कि सूरत अल बकरा और आल इमरान दोनों का आगाज हरूफ मुकद्दात से है, जो भी हम देखेंगे। सूरत बकरा के आगाज में यहूद का कसरत से जिक्र था, इसमें नसारा का है। दोनों सूरतों के आखिर में उम्मत मुस्लिमा का और इस्लाम का जिक्र है। हाँ, अल बकरा में ईमान का जिक्र था, आल इमरान में इस्लाम का जिक्र होगा। गोया कि आप कह सकते हैं कि ये सूरतें हमें अपना मुहासबा भी सिखाती हैं और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के बाद सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, उस दुआ की कबूलियत का भी इसमें एक हमें हल्का सा रंग दिखता है। चंद चीजें सूरत आले इमरान के तारुफ में, क्योंकि बात तो यही है ना कि हर चीज का एक हक होता है। तो पहली तो बात याद रखे, जो आप सब में से उन लोगों को जो अभी नए नए आ रहे हैं हिदायत की तरफ, जिनके दिलों में हिदायत की नई नई तलब जागी है, पूरी सूरत आले इमरान में एक भी हुक्म नहीं है। नो डूज और नो डोंट्स, दुआओं से भरी भी सूरत है। फिर इस सूरत को अगर आप इसके मजामीन की रोशनी में देखें तो आपके सामने एक फ्लो चार्ट है। अगर आप इसके तारुफ और शान नजूल को देखें तो इसके बिल्कुल आगाज में इसमें आजम है। जो सूरतें पेश की जाती हैं कि इनमें अल्लाह का नाम होगा जिसके साथ दुआ कबूल की जाए, तो उसमें सूरत आल इमरान की अभी जो इब्तदाई आयतें पढ़ेंगे वो भी आती हैं। तरतीब के एतबार से तीसरी सूरत है, 20 रुकू हैं, 200 आयतें हैं। आगाज से लेकर चौथे रुकू तक की इब्तदाई दो आयात तक अगर आप देखें तो ये तारुफ है तौहीद का। दूसरा हिस्सा अंबिया कराम की रिसालत से है, छठे रुकू के अख्ताम तक। तीसरा हिस्सा सातवें रुकू के आगाज से लेकर 12वें रुकू के अख्ताम तक है और चौथा हिस्सा 13वें रुकू से सूरत के अख्ताम तक है। ये बातें सिर्फ आपके कानों से इसलिए टकराई जाती हैं कि आप जो बात पढ़ रहे हैं उसके पीछे हकीकत है। ये सिर्फ बातें नहीं है, आपको 2 से 2.5 घंटे में ये पारा मिलता है। अल्लाह जानता है कि इस एक पारे को तैयार करने में कितने घंटे और कितने हाथ लगते हैं। अल्लाह ताला हमें सही बातें दीन और उसकी रूह को लेते हुए समझने वालों में शामिल करें। अगर ये बातें ना भी करूं तो आपका दौरे कुरान तो बहुत ही अच्छा बन जाएगा, लेकिन आप में से वो लोग जो कई साल से सुन रहे हैं उनके लिए फिर इसमें कोई नई चीज नहीं होगी। तो जो शुरू में सुन रहे हैं अगर वो बोर हो रहे हैं तो चंद सेकंड के लिए आंखें बंद कर लें। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मजीद तारुफ देना चाहूंगी सूरत आल इमरान की आयत 1 से 91, जहां पर ये महाराज पारा इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। लिखिए इस सब का खुलासा, अंबिया कराम लोगों को हिदायत की तरफ बुलाते रहे, इनके कुलूब की इस्लाह इनका मिशन था। सवाल कीजिए क्या हम भी आज अपने दिलों की इस्लाह के लिए सुन रहे हैं, हिदायत की तरफ आने और बुलाने के लिए सुन रहे हैं? तो बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें भी हम जो पढ़ेंगे रिसालत का बयान है, फिर इसके अंदर मुख्तलिफ अंबिया कराम का तज़किरा, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र है इस सूरत में। इस्लाम असल में निजात का रास्ता है, ये सूरत के आखिरी हिस्से में हम पढ़ेंगे। दुनिया हाथ में होनी चाहिए, दिल में नहीं, ये हम शुरू में ही पढ़ लेंगे ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहावात वाली आयत में। और इसी तरह से अहले किताब से ताल्लुकात की क्या लिमिट्स हैं, क्या हदबंदी हैं। अब आपका कितना दिल कर रहा होगा कि हम जल्दी से इसको पढ़ें, क्योंकि ये तो बड़ा अहम मौजू है, क्योंकि हम में से हर एक को खास तौर पे बहस में रहते हुए इस मौजू के बारे में जानने की जरूरत होती है। फिर मदद सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से आती है, इस सूरत में गज़वे उहद और बदर के तनाजर में हम देखेंगे। और फिर अल्लाह से मोहब्बत है तो रसूल की इत्तबा कर लो, ये तो वैसे ही बड़ा प्यारा मजमून है। और फिर हम हजरत मरियम की वालदा से सीखेंगे कि औलाद को अल्लाह की राह में लगाना ये कितनी खैर लेकर आता है, और आज की माओ को भी यही दुआ मांगने की जरूरत है। आइए शुरू करते हैं तर्जमे को इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء। अलिफ लाम मीम से सूरत शुरू होती है, हरूफ मुकद्दात हैं, और आप कह सकते हैं कि अलिफ लाम मीम तीन लफ्जों को पढ़ने पे कम से कम 30 नेकियां, और इनके मानी अल्लाह ताला जानते हैं। आयत 2 से 6 का टॉपिक लिखिए, सिफाते हयातो कयूमियत, यानी अल्लाह ताला के अल हई और अल कयूम होने का जिक्र है, और इन्हीं आयतों के बारे में आता है कि इसमें इसमें आजम है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, बिल्कुल आयतुल कुर्सी के आगाज से मिलता जुलता आगाज। अल्लाह ताला वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जिंदा है और सब का निगेबान है। महसूस करें जरा उसके प्यार को, जिसने आप पर हक के साथ इस किताब को नाजिल फरमाया जो अपने से पहले की तस्दीक करने वाली है, इसी ने तौरात और इंजील को उतारा था। अब नहीं, पहले ये किताबें अपने दौर की हिदायत की तरफ बुलाने वाली किताबें थी, लेकिन अब क्या हुआ, इससे पहले लोगों को हिदायत करने वाली बनाकर और कुरान भी इसी ने उतारा। जो लोग अल्लाह ताला की आयतों से कुफर करते हैं इनके लिए सख्त अजाब है, अल्लाह ताला गालिब है, बदला लेने वाला है। ये है कुरान का खूबसूरत मिजाज। देखिएगा हुदल लिन्नास आयत 4 में क्या जुमला मिला, हिदायत लोगों के लिए। हकीकत यह है कि अल्लाह की ये किताब जो आज मेरे आपके सामने है, ये है हुदल लिन्नास। लेकिन फायदा इसे कौन उठाता है, सूरह बकरा का आगाज हुदल लिल मुत्तकीन, ये भी एक मुमासलत है, वहां हुदल लिल मुत्तकीन है या हुदल लिन्नास है। क्या पता चला कि भेजा तो सबकी तरफ था अल्लाह ने इसको हिदायत बनाकर, लेकिन फायदा सिर्फ तकवा वाले करेंगे। तो किताब अल्लाह की दो बड़ी खूबियां आपको इसमें दिख रही हैं, हुदन हिदायत वाली, हक की रहनुमाई करने वाली, और फुरकान यानी हक और बातिल का फर्क करने वाली हिदायत की तरफ बढ़ते हुए कदमों को इस किताब के जरिए थाम लीजिए। ये है वो रास्ता जिस पे आप आगे हैं। यू आर ऑन राइट पाथ। कुरान पाक से बढ़कर कोई चीज नहीं है जो आपको मुझे अल्लाह की पसंद का बनाने में मददगार हो। और वो अल्लाह सुभान व तआला कौन है? इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैयुन फिल अर्दी वला फिस समा। यकीनन अल्लाह ताला पर जमीन और आसमान की कोई चीज पोशीदा नहीं। वो माँ के पेट में तुम्हारी सूरतें जिस तरह की चाहता है बनाता है। इसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। वो गालिब है, हिकमत वाला है। आप अपने घरों के बच्चों को देखें, क्या खूबसूरत सूरतें आती हैं तीन अंधेरों में। ना कोई रंग है उधर, ना कोई पोर्ट्रेट है, ना कोई मॉडल है। कभी नाक टेढ़ी होती, कभी कान टेढ़ा होता अगर हम में से कोई बनाता तो। कहिए फतबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन। असल में तो बताया जा रहा है कि ईसा कैसे खुदा हो सकते हैं, वो तो खुद माँ के पेट से निकले। फिर आगे देखिए तो आयत नंबर 7 से 13 टॉपिक है इसका, मुहकमात और मुतशाबिहात और अहले ईमान का रवैया। ये है वो हिस्सा जिसमें इस पारे का दिल छुपा हुआ है। अल कल्बुल ज़ाइख हुवल्लज़ी अनज़ला अलैकल किताब। वही अल्लाह ताला है जिसने तुझ पर किताब उतारी है जिसमें वाज़े मजबूत आयात हैं जो असल किताब हैं और बास मुतशाबे आयतें भी हैं, बस जिनके दिलों में कजी है। दुआ करिए अल्लाह दिल के टेढ़पन से बचा ले। वो तो इसकी मुतशाबे आयतों के पीछे लग जाते हैं फितने की तलब और इनकी मुराद की जुस्तजू के लिए, हालांकि इनकी हकीकी मुराद को सिवाय अल्लाह ताला के कोई नहीं जानता। और पुख्ता और मजबूत इल्म वाले यही कहते हैं कि हम तो इन पर ईमान ला चुके हैं, ये हमारे रब की तरफ से हैं और नसीहत तो सिर्फ अक्लमंद हासिल करते हैं। दो जहान दुनिया में अल्लाह ने दो जहान बनाए, एक ये दुनिया और एक अगला। कुछ चीजें वो भी हैं इस कुरान में जिनका ताल्लुक अगली दुनिया से। अब हमें आपको नहीं समझ आती। कुछ लोग इन बातों पे कहते हैं ठीक है जब जाएंगे तो देख लेंगे जन्नत कैसी और जहन्नुम कैसी, यही मकसूद है। ऐसे लोगों को यहाँ रासिखून फिल इल्म कहा गया। और इसके बरक्स जो टेढ़ी बातें करते हैं उसके लिए देखिएगा अल कल्बुल ज़ाइख, टेढ़ा दिल, मुनहरिफ दिल। ये वो दिल है जिसमें हिदायत नहीं पड़ती। हिदायत आ जाती है तो टेढ़ा करो तो निकलती है। कप में चाय डाल लीजिए और फिर उस कप को थोड़ा सा टेढ़ा कर दें तो क्या चाय अंदर रहेगी? वो कप से भी गिरेगी, आपका हाथ भी जलाएगी और उसके बाद फिर आपको उसमें से कुछ मिलेगा भी नहीं। इसी तरह बास दफा इंसान के साथ कुछ इसी तरह के हालात होते हैं। अच्छा खासा हिदायत की तरफ चलता चलता वो मुड़ जाता है और गुमराही में जाकर राह को गुम कर देता है। बड़े शोर से पड़े। आप देखिए ड्राइविंग करते वक्त जरा सी गलती आपको गलत रोड पे ले जाती है। जरूरत इस बात की कि अपने आप को इस चीज के साथ जोड़िए और अल्लाह ताला से कहिए कि अल्लाह मेरी हिदायत को कभी मुझे देने के बाद वापस ना लेना। और जब अल्लाह ताला किसी के दिल को हिदायत के लिए चुनता है ना तो उसकी इबादत में लुत्फ आने लगता है, फिर वो बेकारियात से अपने आप को पीछे करता है। तो क्या पता चला? फ्लो चार्ट देखिए। कुरानी आयात के बारे में अहकामात, दो तरह की आयात, आयात मुहकमात, मफहूम वाज़े है, साफ है। ये सिंपल आयतें अकीमुस्सला, आतुज़्ज़का, इनका ताल्लुक आपके मेरे अमल से होता है। इसके बरक्स मुतशाबिहात, मा वराए अक्लो हवास, जन्नत जहन्नम, जहन्नम के फरिश्ते कैसे होंगे, तो इसके ऊपर बस कह दीजिए हमने मान लिया कि हमारे रब की बात है। फिर अगला फ्लो चार्ट देखिए। दो असूल आपको किताबुल्लाह पढ़ने के बताए जा रहे हैं। फी कुलूबिहिम ज़ैगुन फयत्तबिऊन मा तशाबहा मिन्हु इब्तिगाअल फितनति वाब्तिगाअ तावीलिही। इस गिरोह में अपने आप को शामिल ना करने के लिए दो बातें याद रखिएगा और उसके ऊपर अपने आप को जमा लें। नंबर एक, शक और शुबे में नहीं पढ़ना। कुरान पढ़ रहे हैं इस वक्त भी अगर दिल में शकूक और शुबहात हैं तो हिदायत नहीं मिलेगी। और दूसरी बात है वाज़ेह अहकामात पर अमल कीजिए। जैसे आपका बच्चा, आप उसके मुतल्लिक जो बात करें उसको सुने तो मान ले, और अगर आप समझें कि मास्टर्स के अपने बड़े बच्चे को कोई बात कहें तो प्राइमरी में जाने वाला बच्चा आपसे वो सवाल जवाब करे तो आप चिढ़ेंगी। इसी तरह हमें बात समझ नहीं आती। फिर आप देखिए किस हिस्से में रासिखून फिल इल्म की बात हुई। वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म। तो जरा से इसके ऊपर भी गौर कीजिए और दुआ भी कीजिए कि अल्लाह हमें रसूख फिल इल्म दे। کون ہوتے ہیں یہ لوگ؟ پختہ اور مضبوط علم والے. ان کی علامتیں نوٹ کیجئے، راست گو ہوتے ہیں. آپ بھی سچ بولنا شروع کر دیں، آپ کے علم میں پختگی آئے گی. عقل سلیم والے ہوتے ہیں، یعنی ان کی عقل ٹوٹی پھوٹی نہیں ہوتی، بگڑی بھی نہیں ہوتی. حلال کھانے والے اور قلب سلیم رکھنے والے، اللہ ہمیں ایسوں میں شامل کر لے. آگے ہے آیت نمبر 8، ایمان والوں کی دعا، ہدایت کے ملنے کے بعد چھننے کا خوف رکھتے ہوئے. هو الذی انزل علیک الکتاب، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بڑا عطا دینے والا. آپ دیکھیے کہ اس دعا کو پڑھتے وقت روئیں. جس کو ہدایت جتنی قیمتی لگے گی وہ اتنا ہی اس کے چھننے کا خوف رکھے گا. ہمیں کبھی کبھی ایسی ہدایت مل جاتی ہے کیونکہ ماں باپ ہدایت والے تھے، کسی عالم کے گھر میں آ گئے. اصل میں اگر آپ نے واقعی کسی کو دیکھنا ہے نا جس کو ہدایت کی قدر ہے، تو اس کو ملیں جس نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ گمراہی میں گزارا ہو، جو غیر اسلام سے اسلام پہ آیا، جس نے بے دینی کو چھوڑ کر دین اپنایا. کل تک فکشن تھا اس کے ہاتھ میں، آج اللہ کی کتاب ہے. ایسا شخص پھر انشاءاللہ القلب الزائق نہیں رہتا، بلکہ کیا کہتا ہے؟ آپ کے لیے دعا ہے اور میں یہاں کہوں گی کہ اپنے دل کو دوبارہ اس دعا کے ساتھ جوڑیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. سوال پیدا ہوتا ہے کہ دل کو سیدھے راستے پہ لگانا اور کجی میں نہ بدلنا، اس پہ تو بہت دفعہ بات ابھی ہوئی. یہ کیا ہے وہب لنا من لدنک رحمہ؟ یہ کتاب ہے. جب ہدایت کی طلب جاگے فوراً سائن اپ کیجئے اس کتاب کو لینے کے، پھر یہ کتاب آپ کے لیے رحمتم و ہدم و بشرا بنے گی. اور الوہاب ہے اللہ کا نام. جس کو نہیں اس کے بارے میں پتا، الاسماء الحسنی میں سے صرف اس نام کو سن لیجئے، آپ کے اوپر اتنے خزانے انڈیلے جائیں گے اس نام کو جاننے کے بعد کہ حقیقت میں اللہ ہی الوہاب ہے. پھر آگے اسی دعا کی کنٹینیوشن اور اسی کا ایک الگ حصہ، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتا. کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے عذابوں سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گی. یہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہے. سوچیے کیا فائدہ ان چیزوں کو جمع کر کے جو کام نہ آئے. جیسا آل فرعون کا حال ہوا اور جن سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا. اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. کفار سے کہہ دیجئے کہ تم ان قریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے. یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو گھت گئی تھی، مسلمان اور قریش مکہ. ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی، یعنی صحابہ کرام، اور دوسرا گروہ کفار کا تھا. وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے. یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے. گویا کہ غزوہ بدر میں اللہ نے وہ معاملہ کر دکھایا جو کل قیامت کے دن ہوگا. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جب اسباب پیدا کرتے ہیں تو اسی طرح پیدا کرتے ہیں. اب اس کے آگے آیت نمبر 14، پسندیدہ چیزوں کی محبتیں. انسان ہدایت کے رستے سے جس وجہ سے اترتا ہے، ذرا سا اس لسٹ میں ڈھونڈیے گا اپنے آپ کو کہ میں کس چیز کو ویک پوائنٹ بنا کر اپنی کس پسند کی چیز کو اللہ کے اور اپنے بیچ کی رکاوٹ بنا کر بیٹھی ہوں. زجین للناس حب الشہوات، مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی، یعنی خوبصورت کر دی گئی، ایڈون، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی. ذالک متاع الحیات الدنیا. ذرا سے اپنے گھر کے اوپر نظریں ڈال کر سنیے اس حصے کو. یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں یہ اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں؟ تقوی والوں کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی رضا مندی، سب بندے اللہ کی نگاہ میں ہیں. जी ये है मरगूबात नफ्स की एक लिस्ट। आयत 14 जुजीना लिन्नासी हुब्बु शहवात। नंबर एक माल, दौलत, बेटे, औरतें, जमीन, जायदाद, गाड़ियां, घर, क्या आप इसमें से किसी चीज को नहीं जानते क्या? यही तो वो चीजें हैं जिस जो दिल में भी हैं और बाहर भी हैं। हकीकत है कि ये चीजें अपनी जगह से बुरी नहीं, लेकिन आखिरत की कीमत पे अगर इनको पाते हुए नमाजें रोजे छोड़ दें, अपने दीन को पीछे करके जाहिल रहना पसंद कर लें, तो ये एक बहुत बड़ी आजमाइश है। आप देखिए कि अल्लाह जरूरियात तो सबकी पूरी करता है, लेकिन जब लोग ऐश परस्ती में पड़ते हैं ना, असल से ज्यादा एक्सेसिवनेस, तो फिर दुनिया पांव की बेड़ी बनती है। लिहाजा आइए जरा एक तकाबुल देखते हैं, जमाने हाल और ऐश परस्ती यानी लग्जरियस लाइफस्टाइल, और इस्लाम इसको कैसे कंडेम करता है। जब ऐश परस्ती होती है तो इंसान को जाती बनाव सिंघार बहुत अच्छा लगता है, फितरत में है, लेकिन मुबालगा होता है। दुल्हन तो हमेशा ही सजती थी, अब दूल्हा भी सजने लगे। गाड़ी तो काफी अच्छे से सजती थी, अब तो न जाने रस्ते भी सजने लगे। फिर आप देखिए कपड़ों की बेजा खरीदारी, ब्रांड कॉन्शियस होना, मरके, मरके को अगर आप पंजाबी में पढ़े ना तो क्या होता है मरके, और मैं कहती मर ही जाता है बंदा ब्रांड देखकर, आप इसीलिए हंस रहे हैं हा? यानी जान चली जाती है मरका देख के, अल्लाह अकबर कबीरा। फिर नमूदो नुमाइश, फिर खाने में गलूब आता, पहले खाते थे सेहत के लिए, टेस्ट के लिए, अब खाते हैं दिखावे के लिए। पहले तस्वीरें पे उतार कर बूंद को दिखाते हैं जिनके घर में सब्जी भी नहीं पकी होती उस दिन से, दाल भी नहीं है, हो सकता है झगड़ा पहले ही चल रहा हो, बच्चे कहते हैं अपने नहीं खानी बिनिया, और आप उनको अपने लश पुश बिजे की तस्वीरें भेजते हैं। मुआशरे में फिसाद आता है इससे, मानिए ना मानिए। फिर शादी की महफिलें सजती हैं, तकरीबात होती हैं, किसी से बात हुई बड़ी क्लोज सर्कट, और मेरे ऊपर जो कहना चाहिए कि क्या बताऊं, वक्त भी नहीं है, लेकिन जिसका खुलासा यह है, आपके इस नॉर्वेजियन चैनल ने किसी को एक ऐसी वीडियो बनाने पे माइल किया है और उससे पूरी रिपोर्ट्स ली हैं कि आप लोगों की शादियां कैसी होती हैं, देसी कल्चर की शादियां, और वो कोरोना के साथ उसको रिलेट कर रहे हैं और उसको पूछ के बता के कि इस वीडियो में ये दिखाएंगे, वो अभी ये चलने वाली है आपके स्टेशन पे वीडियो, कि वो आपको जो सारे दुनिया के सामने नशर करेंगे कि तुम मुसलमान शादियों के ऊपर इतना खर्चा करते हो, और फिर जो कुछ इसके साबिकात और लाहेकात, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। फिर महंगे मोबाइल और गाड़ियां, रिहायश गाहें और इनकी आराइश, ब्रांडेड कपड़े, जूते, पर्स वगैरह, ये चीजें इस्लाम में नहीं जचती। खाइए, पहिए, पहनिए, सब करते थे शुरू से, लेकिन आज तो ये एक किस्म की बीमारी बन गई। ऐश परस्ती की मजम्मत अल्लाह के नबी ने कैसे की? अबू सईद खुदरी की रिवायत, आपने फरमाया दुनिया मीठी सरसब्स है और अल्लाह ताला तुम्हें इसमें नायब बनाने वाला है, यानी एक मकसद देके भेजा उसने, और वो देखेगा कि तुम कैसे अमाल करते हो। बस दुनिया से बचो और औरतों के फितने में मुबतला होने से बचो। सही मुस्लिम की इस रिवायत पे अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। लिहाजा अगली आयतों में वाकई फिर ईमान वालों की दुआ आ गई। ईमान वाला दुनिया से ऐसे डरता है जैसे कोई बिजली और करंट से डरता है, क्योंकि ये चीजें मकसद से पीछे करने का जरिया बन जाती हैं कभी कभी। तो अल्लज़ीन यकूलून रब्बना इन्ना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार, जो कहते हैं कि हमारे रब हम ईमान ला चुके इसलिए हमारे गुनाह माफ फरमा और हमें आग के अजाब से बचा, जो सब्र करने वाले और सच बोलने वाले और फरमाबरदारी करने वाले और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले और पिछली रात को बख्शिश मांगने वाले हैं, अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को कर दे ऐसा। यह है जी तरतीब के एतबार से कुरानी दुआओं में फैनी करीब दुआ नंबर 8, रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। आप भी अपनी रात को सजाइए इस दुआ के साथ, और रमजान की रातें जब आप सहरी बनाने के लिए उठें तो इस दुआ को पढ़िए, और अल्लाह आपकी मेरी इन दुआओं को कबूल फरमाए। आगे आयत 18 से 22, टॉपिक है अदल व क़िस्त का क़याम। शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह ताला फरिश्ते और अहले इल्म इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वह अदल के साथ दुनिया को कायम रखने वाला है, इस गालिब और हिकमत वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। सबसे खूबसूरत आयत है ये इल्म वालों की शान में। बेशक अल्लाह ताला के नज़दीक दीन इस्लाम ही है और अहले किताब ने अपने पास इल्म आ जाने के बाद आपस की सरकशी और हसद की बिना पर इख्तलाफ किया और अल्लाह ताला की आयतों के साथ जो भी कुफर करे अल्लाह ताला इसका जल्द हिसाब लेने वाला। अल्लाह हमें ऐसे जुर्म से बचा ले। फिर भी अगर ये आपसे झगड़ा करें तो आप कह दीजिए कि मैं और मेरे ताबेदारों ने अल्लाह के सामने अपना सरे तस्लीम खम कर दिया और अहले किताब से और इन अनपढ़ लोगों से कह दीजिए कि क्या तुम भी इताअत करते हो, बस अगर ये भी ताबेदार बन जाएं तो यकीनन हिदायत वाले हैं और अगर ये रूगर्दानी करें यानी मुंह फेरें तो आप पर सिर पहुंचा देना है और अल्लाह ताला बंदों को खूब देखभाल रहा है। महसूस करें इन आयतों को अपने दिल पे। जो लोग अल्लाह ताला की आयतों से कुफर करते हैं और अंबिया को यानी नबियों को नाहक कत्ल कर डालते हैं और जो लोग अदल व इंसाफ की बात कहें इन्हें भी कत्ल कर डालते हैं, तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें दर्दनाक अज़ाब की खबर दे दीजिए। इनके अमाल दुनिया और आखरत में गारत हैं और इनका कोई मददगार नहीं। एक से एक बात दिल पे उतरने वाली है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि इस्लाम दोस्त बन जाए, इस्लाम दुश्मन न बने। इसके बाद आयत नंबर 23 से 25, टॉपिक लिखिए मजहबी गिरोहबंदी। और जहां ये टॉपिक आता है दिल पे बहुत बोझ आता है, तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को छोटे छोटे गिरोहों और ऐसे फिरकों से निकालकर एक लफ्ज इस्लाम पे जमा कर दे। अलम तर इल्लज़ीन ऊतू नसीबा, क्या आपने इन्हें नहीं देखा जिन्हें एक हिस्सा किताब का दिया गया? वो अपने आपस के फैसलों के लिए अल्लाह ताला की किताब की तरफ बुलाए जाते हैं, फिर भी इनकी एक जमात मुंह फेर कर लौट जाती है। इसकी वजह इनका ये कहना है कि हमें तो गिने चुने चंद दिन की आग जलाएगी। रोकिए जरा, आज भी कुछ लोग ये जुमला बोलते हैं, कहते हैं कुछ दिन आग में जलेंगे फिर तो जन्नत मिलनी है। तो जरा सा आज जरा अपनी आग के ऊपर अपनी उंगली की पोर जरा रखिए स्टोव के ऊपर, तो फिर ये जुमला खुद बोलिए तो आपको समझ आएगी कि इस दुनिया की आग से 69 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग आग में जाकर क्या होगा। इनकी घड़ी घड़ाई बातों ने इन्हें इनके दीन के बारे में धोखे में डाल रखा है। यानी ये जुमला पता क्यों बोलते हैं? मजीद गुनाह करने के लिए। बस क्या हाल होगा जब हम इन्हें उस दिन जमा करेंगे जिसके आने में कोई शक नहीं। फकीफ इजा जमा ना हमलिया मिल्ला वफियत कुल्लु नफ्सिम मा कसबत वहुम ला युस्लमून, और हर शख्स को अपना अपना किया पूरा पूरा दिया जाएगा और इन पर जुल्म ना किया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, कितनी जरूरत है बंदे की जब वो ये कहता है देखा जाएगा, यही देखा जाएगा ना कि तुम आग में जल रहे हो और सब देख रहे हैं। तो जब दिल पे बोझ आता है ना तो आप देख ही रहे हैं कि सूरत आले इमरान में आपको साथ ही खूबसूरत सी दुआएं भी नजर आने लग जाती हैं और आप जितना ज्यादा इन दुआओं पे गौर करते जाएंगे ना आप वाकई अपने दिल के अंदर इसकी खुशी महसूस करेंगे। तो आयत 26, अल्लाह इज्जत और जिल्लत का मालिक। आज के बस बंदों से इज्जत ना मांगिए, अच्छे कपड़े और अच्छे जोड़े और दुल्हन को जेवरात पहनाकर। इज्जत अल्लाह देता है। कैसे? कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, आप कह दीजिए कि अल्लाह ए तमाम जहान के मालिक, तू जिसे चाहे बादशाही दे और जिसे चाहे सल्तनत छीन ले और तू जिसे चाहे इज्जत बख्शे और जिसे चाहे जिल्लत दे, तेरे ही हाथ में सब भलाइयां हैं, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। दुआ नंबर 9, आल इमरान 26, قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير। ये दुआ कब मांगे? जब वाकई आप दुनिया में किसी तरह परेशान है। इससे मिलते जुलते अल्फाज के साथ दुआ है जो कर्ज की अदायगी के लिए अल्लाह के नबी ने एक सहाबी को सिखाई। तो आप भी इस दुआ को अल्लाह की बड़ाई को सामने रखते हुए मांगे और अल्लाह ताला सबको कर्जों से पाक कर दे। फिर अल्लाह की खूबियां, तू ही रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में ले जाता है, तू ही बेजान से जानदार पैदा करता है और तू ही जानदार से बेजान पैदा करता है, तू ही है कि जिसे चाहता है बेशुमार रोजी देता है। अल्लाह हमें इसका यकीन दिला दे। और आयत 28 से 30, बड़ी जबरदस्त आयत है। टॉपिक है सिर्फ अल्लाह का डर रखना है। दो दफा आप ये जुमला पढ़ेंगे और सुनेंगे क्या वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सह। मोमिनों को चाहिए कि ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त न बनाए। और जो ऐसा करेगा वो अल्लाह ताला की किसी हिमायत में नहीं, मगर ये कि इनके शर से किसी तरह बचाओ मकसूद हो और अल्लाह ताला खुद तुम्हें अपनी जात से डरा रहा है। पूछिए खुद से, कितना डर है मुझे अल्लाह का? बंदों से डरते, लोगों से डरते, अल्लाह से कम डरते? और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। कह दीजिए कि ख्वाह तुम अपने सीनों की बातें छुपाओ, ख्वाह जाहिर करो, अल्लाह ताला सबको जानता है। आसमानों जमीन में जो कुछ है सब इसे मालूम है और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। जरा क्यामत का दिन सामने लाइए, तसव्वुर की निगाह से देखिए। यौमा तजीदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत, जिस दिन हर शख्स को अपनी ही नेकियों की, जिस दिन हर नफ्स यानी हर शख्स को अपनी की हुई नेकियों की फिक्र होगी। और क्या होगा? वो अपनी की हुई नेकियों को और अपनी की हुई बुराइयों को मौजूद पा लेगा। आरजू करेगा कि काश इसके और बुराइयों के दरमियान बहुत ही दूरी होती। नमाज में क्या दुआ सिखाई? अल्लाहुम्मा बाइक बैनी व बैन खताया, अल्लाह हमें दुनिया में अपनी बुराइयों से दूर कर दे। आप में से जो हिदायत की तरफ अभी बिल्कुल पहला कदम उठा रहा है, यहां दुआ कर ले, अल्लाह मुझे मेरी बुराइयों से नफरत दे दे, पहले तो मुझे शऊर दे दे मेरा क्या काम ठीक है और क्या नहीं, क्या काम तेरी और तेरे रसूल की पसंद का और क्या नफरमानी का, और फिर अल्लाह दिन ब दिन मेरे दिल में इन चीजों से दूरी डाल दे। अल्लाह ताला तुम्हें अपनी जात से डरा रहा है, अल्लाह करे हम डर जाए। और अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा ही मेहरबान है। क्या बैलेंस है, जब बंदा डर जाए तो अल्लाह अपनी मेहरबानी की बात करते हैं। तो आप देखिए आयत 29 में अल्लाह ताला की सिफत अल अलीम। तो कहिए खुद से, सीनों में छुपे भेदों को जानने वाला अल अलीम, जाहरी आमाल का हिसाब रखने वाला अल अलीम, तो फिर हम उससे नहीं छुप सकते। आगे से अब सूरत आल इमरान बल्कि अगले ही बारे में इसका हिस्सा चलेगा, उन लोगों का तस्करा शुरू होने लगा जो अल्लाह के चुने हुए लोग थे। और यहां से असल में आले इमरान यानी हजरत ईसा और उनके घराने का जिक्र है, लेकिन आयत 31 से 32 में सबसे प्यारे रसूल अपने रसूल की इताअत की बात है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कैसे? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिउनी, कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी ताबेदारी करो, खुद अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। करते हैं ये दावा, बोलिए अल्लाह से कहिए कि हाँ अल्लाह मेरे दिल में नबी की मोहब्बत डाल दे और इत्तबा डाल दे। क्या होगा? अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देगा। अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। कह दीजिए कि अल्लाह ताला और रसूल की इताअत करो, अगर ये मुंह फेर लें तो बेशक अल्लाह ताला कुफार से मोहब्बत नहीं रखता। तो ये है जी अल कल्बु मुहिब्बुल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला दिल। ये कौन सा होता है? जो रसूल की इत्तबा करता है। दो फवायद हैं इस आयत में अल्लाह के नबी की पैरवी करने के। एक, फिर अल्लाह की मोहब्बत भी मिलेगी, युहिब्बुकुमुल्लाह, और दूसरी यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ करेगा। यह अमल का नुक्ता लिख लें कि मैंने रसूल की पैरवी किसी हाल में नहीं छोड़नी ताकि मुझे अल्लाह की मोहब्बत मिले। हदीस आपके सामने है, सही मुस्लिम 44। तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक इसको मेरी मोहब्बत, इसकी औलाद, माँ बाप और सब लोगों से ज्यादा ना हो जाए। अल्लाह हमें यह अता फरमा दे। और आगे 33 से 42, अल्लाह के चुने हुए लोग, कैसे? इन्नल्लाहा अस्तफा, बेशक अल्लाह ताला ने तमाम जहान के लोगों में से आदम अलैहिस्सलाम को और नूह अलैहिस्सलाम को, इब्राहिम के खानदान और इमरान के खानदान को मुंतखब फरमाया कि ये सब आपस में एक दूसरे की नस्ल से हैं, और अल्लाह ताला सुनता और जानता है। आगे देखिएगा हजरत ईसा की नानी का तस्करा यानी हजरत मरियम की पैदाइश का किस्सा शुरू होता है। और कैसे? जब इमरान की बीवी ने कहा, ए मेरे रब, मेरे पेट में जो कुछ है इसे मैंने तेरे नाम आजाद करने की नजर मान ली, तो मेरी तरफ से कबूल फरमा। याद करे इब्राहिम की दुआ, रब्बना तकब्बल मिन्ना। बड़े लोगों को अमल करने से ज्यादा उसकी कबूलियत की फिक्र होती है, और हमें अल्लाह माफ करे सिर्फ दूसरों को दिखाने की जरूरत होती है, लोग देख लें कि हम क्या कर रहे हैं। हालांकि उनका जुमला क्या है? तकब्बल मिन्नी, अल्लाह मेरी तरफ से इसको कबूल कर ले। यकीनन तो खूब सुनने वाला और पूरी तरह जानने वाला। जब बच्ची को जना तो कहने लगी, ऐ परवरदिगार, मुझे तो लड़की हुई है। अल्लाह ताला को तो खूब मालूम है कि क्या औलाद हुई है, और लड़का लड़की जैसा नहीं। मैंने इसका नाम मरियम रखा। मैं इसे और इसकी औलाद को शैतान मर्दूत से तेरी पनाह में देती हूँ। बस इसे इसके परवरदिगार ने अच्छी तरह कबूल फरमाया और इसे बेहतरीन परवरिश दी। इसकी खैर खबर लेने वाले जकरिया को बनाया। जब कभी जकरिया अलैहिस्सलाम इनके हुजरे में जाते और इनके पास रोजी रखी हुई पाते, वो पूछते, ऐ मरियम, ये रोजी तेरे पास कहाँ से आई? वो जवाब देती कि अल्लाह के पास से है, बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहे बेशुमार रोजी दे। इसी जगह जकरिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अपने पास से पाकीजा औलाद अता फरमा। क्या पता चला, ये दुआ आपके पास तरतीब में आने वाली अगली दुआ में आ गई। अभी इसको देखते हैं, पहले तर्जमा आगे देखें। पर फरिश्तों ने इन्हें आवाज दी जबकि वो हुजरे में खड़े नमाज पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला तुझे यहया की यकीनी खुशखबरी देता है, जो अल्लाह ताला के कलमे की तस्दीक करने वाला, सरदार, जाबिते नफ्स यानी सेल्फ कंट्रोल्ड और नबी है और नेक लोगों में है। जकरिया अलैहिस्सलाम कहने लगे, ऐ मेरे रब, मेरे यहां बच्चा कैसे होगा? तो सवाल कीजिए, फिर मांगा क्यों? इंसान की कमजोरी है, चीज मिल जाए तो फिर परेशान होने लगता है। मैं बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी बीवी बांझ है। फरमाया, इसी तरह अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। ज़करिया अलैहिस्सलाम कहने लगे, परवरदिगार, मेरे लिए इसकी कोई निशानी मुकर्रर कर दे। फरमाया, निशानी ये है कि 3 दिन तक तो लोगों से बात न कर सकेगा। क्यों? अल्लाह की नेमतों में डूबे हुए लोग ऐसे ही होते हैं, फिर जुबान बंद हो जाती है। सिर्फ इशारे से समझाएगा तो अपने रब का जिक्र कसरत से कर और सुबह शाम इसी की तस्बीह बयान करता रहे। आज का कोई होता तो कहते, बेबी शावर रखो, इतने सालों बाद बच्चे की उम्मीद हुई है। हालांकि अल्लाह वाले अल्लाह की नेमतों पे मजीद झुक जाते हैं। तब देखिए कि आयत 33 से 40 तक हमने अल्लाह के मुंतखब बंदों की खूबियां देखी, जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम यकसू और हनीफ थे, ज़करिया अलैहिस्सलाम सिर्फ अल्लाह से मांगने वाले हैं, और इमरातु इमरान औलाद को दीन के लिए नजर करने वाली माँ, और ईसा की नानी। अल्लाह हमें ऐसी माएं बना दे जो अपने बच्चों को दुनिया के हवाले करने की बजाय अल्लाह के हवाले कर दे। जब ऐसा हो तो फिर क्या होता है, इसका तस्करा हम हजरत मरियम की जवानी और उनकी इबादत के किस्सों से देखेंगे। आज 42 से 44 टॉपिक है हजरत मरियम की शान। वइस कालतिल मलाइकतु या मरियम, और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह ताला ने तुझे बरगजीदा कर लिया और तुझे पाक कर दिया और सारे जहान की औरतों में से तेरा इंतखाब कर लिया। ए मरियम, तुम अपने रब की इताअत करो और सजदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गैब की खबरों में से है जिसे हम आपकी तरफ से वही से पहुंचाते हैं। आप उनके पास न थे जबकि वो अपने कलम डाल रहे थे कि मरियम को इनमें से कौन पालेगा, यानी नेक बाप की बेटी को पालने के लिए लोग बेचैन हैं। माँ बाप की नेकियां बच्चों के लिए बाद में भी फायदेमंद होती हैं। और ना तो उनके झगड़ों के वक्त इनके पास था। क्या पता चला कि अल्लाह के नबी को ये खबरें कुरान दे रहे, आप बताते खुद वहां मौजूद नहीं थे। फिर आगे आयत 45 से 51, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बिशारत और मौजूदात। आप देखिए, अगर आप ये टॉपिक्स लिख रहे हैं ना सिर्फ, तो आपको बाद में किसी को कोट करना हो तो अपनी इस लिस्ट को अलग से टाइप कीजिए, तो इंशाल्लाह पूरे कुरान का एक किस्म का इंडेक्स तैयार है। इस कालतिल मलाइकतु या मरियम, जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह ताला तुझे अपने कलमे की खुशखबरी देता है जिसका नाम मसीह बिन मरियम है, जो दुनिया और आखरत में जी इज्जत है, और वो मेरे मुकर्रबीन में से है। वो लोगों से अपने गहवारे में बातें करेगा और अधेड़ उम्र में भी। ये इशारा है हजरत ईसा के वापस आने की तरफ। और वो नेक लोगों में से होगा। कहने लगी, इलाही, मुझे बेटा कैसे होगा, हालांकि मुझे तो किसी इंसान ने हाथ नहीं लगाया। फरिश्ते ने कहा, इसी तरह अल्लाह ताला जो चाहे पैदा करता है। जब कभी वो किसी काम को करना चाहता है तो सिर्फ ये कह देता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। आप भी दुआ कर लें कि साहिब कुन फयाकून हमारे लिए हिदायत के रास्ते आसान कर दे। हजरत ईसा के मौजज़ात, अल्लाह ताला इसे लिखना और हिकमत और तौरात और इंजील सिखाएगा और वो बनी इसराइल की तरफ रसूल होगा। वो कहेगा कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानी लाया हूँ, मैं तुम्हारे लिए परिंदे की शक्ल की तरह मट्टी का परिंदा बनाता हूँ, फिर इसमें फूक मारता हूँ तो अल्लाह ताला के हुक्म से परिंदा बन जाता है और अल्लाह ताला के हुक्म से मैं मादरजाद अंधे को और कोढ़ी को अच्छा कर लेता हूँ और मुर्दे को जगा देता हूँ, और जो कुछ तुम खाओ और जो अपने घरों में जखीरा करो मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानियां हैं अगर तुम ईमान लाने वाले हो। उस दौर में तिब का रिवाज था, तो हजरत ईसा को जो मौजज़ात दिए गए वो तिब से मुतल्लिक थे। और क्या खूबी थी हजरत ईसा की, उन्हीं की जुबान से आप देखिए सारी बातें बयान हो रही हैं। और मैं तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ जो मेरे सामने है, और मैं इसलिए आया हूँ कि तुम पर बास वो चीजें हलाल करूं जो तुम पर हराम कर दी गई हैं, और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानी लाया हूँ, इसलिए तुम अल्लाह से डरो और मेरी फरमाबरदारी करो। यकीन मानो मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह ही है, तुम सब इसी की इबादत करो, यही सीधी राह है। हम में से कौन है जो किसी नसरानी को ये बातें बता सके? आज उनके क्रीड और हजरत ईसा के अपने अकीदे में कितना फर्क है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे अल्लाह के नबी और सहाबा का जो तरीका था उसमें और आज हमारे अपने तरीकों में बहुत फर्क हो गया। इसके बाद आयत 52 से 60, हजरत ईसा का आसमानी सफर। गोया कि हम इस वक्त हजरत ईसा की लाइफ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सीरा फलम्मा हस्सा ईसा मिन्हुमुल कुफ्र काला मन अंसारी इल्लाह। मगर जब हजरत ईसा ने इनका कुफर महसूस कर लिया तो कहने लगे, अल्लाह ताला की राह में मेरी मदद करने वाला कौन है? क्या पता चला कि नबी ही क्यों ना हो, उसको भी अल्लाह के रास्तों में अंसारुल्लाह की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये काम तन्हा करने वाला काम ही नहीं। हवारियों ने जवाब दिया कि हम अल्लाह ताला की राह के मददगार हैं, अल्लाह हमें भी अंसारुल्लाह बना दे। हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए और आप गवाह रहिए कि हम ताबेदार हैं। ऐ हमारे पालने वाले माबूद, हम तेरी उतारी हुई वही पर ईमान लाए और हमने तेरे रसूल की इत्तबा की, बस तू हमें गवाहों में लिख ले। और कुफार ने मकर किया और अल्लाह ताला ने भी खुफिया तदबीर की, और अल्लाह ताला सब खुफिया तदबीर करने वालों में से बेहतर है। यानी अल्लाह ताला जैसे आजकल के हालात में ये सब कुछ करवा रहा है। फिर इसी तरह आप देखिए कि इसमें हमारी अगली आयत दुआ आ गई, आल इमरान 53 में, रब्बना अग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फी अमरीना व सब्बित अक़दामना व अंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। अल्लाह हमें भी ऐसी दुआएं मांग कर उस पर अमल की तौफीक दे। जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईसा मैं तुझे पूरा लेने वाला हूँ और तुझे अपनी तरफ उठाने वाला हूँ और तुझे कुफार से पाक करने वाला हूँ और तेरे ताबेदारों को काफिरों के ऊपर गालिब करने वाला हूँ, क्यामत के दिन तक तुम सब का लौटना मेरी ही तरफ है, मैं ही तुम्हारे आपस के तमाम तर इख्तलाफात का फैसला करूंगा, फिर काफिरों को तो मैं दुनिया और आखिरत में सख्त तर अजाब दूंगा और इनका कोई मददगार न होगा। हाँ लेकिन ईमान वालों और नेकामल वालों को अल्लाह ताला इनका सवाब पूरा पूरा देगा और अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। ये जैसे हम तेरे सामने पढ़ रहे हैं आयते हैं और हिकमत वाली नसीहत है। अल्लाह ताला के नजदीक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल हु बहू यानी एस इट इज आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल है, जिसे मट्टी से बनाकर कह दिया कि हो जा, बस वो हो गया। तेरे रब की तरफ से हक यही है, खबरदार शक करने वालों में ना होना। आप देखिए एक फ्लो में जब आप इन आयतों का तर्जमा पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छा नहीं लगता? कैसे अल्लाह ताला की बातें तर्जमे के साथ कुरान के दिल पर पड़ती हैं। अब अगला दौर है हजरत ईसा के नाते से अल्लाह के नबी के सामने एक चैलेंज पेश किया गया था, आयत मुबाहला कहते हैं, आयत नंबर 61 से 63 को, फमन हाज जकफी हिमिम बात। इसलिए जो शख्स आपके पास इस इल्म के आ जाने के बाद भी आपसे इसमें झगड़ा करे तो आप कह दीजिए कि आओ तुम अपने फर्जंदों को और हम तुम अपनी अपनी औरतों को और हम तुम खास खास अपनी जानों को बुला लें, फिर हम आजजी के साथ इल्तजा करें। क्या इल्तजा करेंगे? और झूठों पर लानत डालें। यकीनन सिर्फ यही सच्चा बयान है और कोई माबूद नहीं बरहक सिवाय अल्लाह के, और बेशक गालिब और हिकमत वाला अल्लाह ही है। फिर भी अगर कबूल न करें तो अल्लाह ताला भी सही तौर पर फसादियों को जानने वाला है। एक वाक्या है नजरान के वफद वालों के साथ नबी सल्लम का जो मुबाहला था उसी का तस्करा है नायतों में। आखिर 64 से 71 में दावत देने का बहुत खूबसूरत तरीका, आप भी सीखें मैं भी सीखती हूँ। टॉपिक लिख लीजिए तौहीद एक मुश्तरक हकीकत, यानी कॉमन ग्राउंड से बात शुरू कीजिए। कैसे? कुल या अहलल किताब, कुल या अहलल किताब तआलु इला कलिमा। आप कह दीजिए कि अहले किताब ऐसी इंसाफ वाली बात की तरफ आओ जो हम में तुम में बराबर है, कि हम अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करें, ना इसके साथ किसी को शरीक बनाएं, ना अल्लाह ताला को छोड़कर आपस में एक दूसरे ही को रब बनाएं। बस अगर वो मुंह फेर लें तो तुम कह दो कि गवाह रहो हम तो मुसलमान हैं। आप नोट कर रहे हैं कि सूरत आल इमरान में लफ्ज़ मुस्लिम कितनी कसरत से आ रहा है। यही था नाम यहूद और नसारा का, तो ये लफ्ज़ यहूदी या नसरानी फिरकावारियत का नाम है। अपने दौर में इनका नाम मुसलमान था, जैसे अल्लाह के नबी और साहबा के दौर में मुसलमान खुद को मुसलमान कहते थे। ये जितने नाम आज हमें मिलते हैं ये सब बाद में नाम सामने आए। फरमाया, अहले किताब तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में क्यों झगड़ते हो, हालांकि तौरात और इंजील तो इनके बाद नाजिल की गई, क्या तुम फिर भी नहीं समझते? सुनो, तुम लोग इसमें झगड़ चुके जिसका तुम्हें इल्म था, फिर अब इस बात में क्यों झगड़ते हो जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं, और अल्लाह ताला खूब जानता है और तुम जानते नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना तो यहूदी थे और ना नसरानी, बल्कि वो तो यक तरफा यानी फोकस्ड खालिस मुसलमान थे, वो मुशरिक भी ना थे। देखिये ये तो कुरान की गवाही है ना। मैं एक जुमला बोल दूं, अल्लाह ने कहा कि इब्राहिम ना यहूदी थे ना नसरानी, तो अल्लाह के नबी क्या थे? कभी आपने अभी तक के पारों में या कहीं हदीस पढ़ी हो अल्लाह के नबी के साथ के नाम, अल्लाह के नबी के साथ कोई नाम सुना था? आप क्या थे? आप ब्रेलवी थे, देवबंदी थे, फुलां थे, फुलां थे। देखिए ये सब नाम अपनी जगह अच्छे होंगे, लेकिन अल्लाह के नबी और साहबा की जिंदगी में ऐसे नाम नहीं थे, क्योंकि इसके बाद हुआ क्या? ये गलत है कि ठीक, इस पर बहस नहीं है, लेकिन फिर हर बंदा अपने नाम की वजह से जुड़ा और उसके बाद फिर उम्मत कई मुख्तलिफ टुकड़ों में बट गई। अल्लाह ताला हमें खालिस मुसलमान बना दे। सब लोगों से ज्यादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से नजदीक तर वो लोग हैं जिन्होंने इनका कहा माना, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो लोग ईमान लाए, मोमिनों का वली और सहारा अल्लाह ही है। अहले किताब की एक जमात चाहती है कि तुम्हें गुमराह कर दे, दरअसल वो खुद अपने आप को गुमराह कर रहे हैं और समझते नहीं। अहले किताब तुम बावजूद कायल होने के फिर भी जानते बूझते अल्लाह की आयतों का क्यों कुफर कर रहे हो? अहले किताब बावजूद जानने के हक को बातिल को क्यों खलत मलत कर रहे हो और क्यों हक को छुपा रहे हो? देखिए ये उनके कह लीजिए कि शऊर को बेदार करने वाले जुमले थे, जिसके बाद फिर जुरत भी न हुई उनको अल्लाह के नबी के सामने आने की। आगे आयत 72 से 76, टॉपिक लिखिए अहले किताब की शकावत कल्बी, यानी बदबख्ती और दिल की सख्ती जब तारी हो जाए तो बंदा हिदायत की बात से फायदा भी नहीं उठाता बावजूद उसको सुनने के। वकालत ताइफत मिन अहलिल किताब, और अहले किताब की एक जमात ने कहा कि जो कुछ ईमान वालों पर उतारा गया है इस पर दिन चढ़े तो ईमान लाओ और शाम के वक्त काफिर बन जाओ ताकि ये लोग भी पलट जाएं, यानी साजिश बेनकाब हो गई, और सिवाय तुम्हारे दीन पर चलने वालों के और किसी का यकीन न करो। आप कह दीजिए कि बेशक हिदायत तो अल्लाह ही की हिदायत है, और ये भी कहते हैं कि इस बात का भी यकीन न करो कि कोई इस जैसा दिया जाए जैसा तुम दिए गए हो, या ये कि ये तुमसे तुम्हारे रब के पास झगड़ा करेंगे। आप कह दीजिए, फजल तो अल्लाह ताला ही के हाथ में है, वो जिसे चाहे इसे दे, अल्लाह ताला वुसअत वाला और जानने वाला है। यानी ऐसे लगता है कि बात को मिटा जा रहा है, पैसों में ना पड़ो, झगड़ों में ना पड़ो, और वो अपनी रहमत के साथ जिसे चाहे मखसूस कर ले, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। बस अहले किताब तो ऐसे हैं कि अगर इन्हें तू खजाने का अमीन बना दे तो भी वो तुझे वापस कर दे, और इनमें से बाज ऐसे भी हैं कि अगर तू इन्हें एक दीनार भी अमानतन दे दे तो तुझे अदा न करें। हाँ, ये और बात है कि तू इसके सर पर ही खड़ा रहे, लेकिन साफ है जिसमें खूबी है उसका भी जिक्र है और जिसकी खामी है उसका भी तस्करा है। ये इसलिए कि उन्होंने कह रखा है कि हम पर इन जाहिलों, मुराद थे गैर यहूदी, इनके हक का कोई गुनाह नहीं। यानी जिसकी जो चीज ले लें, खा लें, उनकी जमीन ने, उनके मुल्क, हमें कोई नहीं पूछ सकता, क्योंकि दुनिया तो बनी हमारे लिए थी, ये सोच थी उनकी। फरमाए, ये लोग बावजूद जानने के अल्लाह ताला पर झूठ कहते हैं, क्यों नहीं, मुआवजा तो होगा। अलबत्ता जो शख्स अपना इकरार पूरा कर ले और परहेजगारी करे तो अल्लाह ताला भी ऐसे परहेजगारों से मोहब्बत करता है। यानी खुशफहमियों से निकलो और अल्लाह की बात को मानो। फिर आगे आयत 77 से 80, टॉपिक है थोड़ी कीमत लेने वाले। इन्नल्लज़ीन यश्तरून बियहदिल्लाह, बेशक जो लोग अल्लाह ताला के अहद और अपनी कस्मों को थोड़ी कीमत पर बेच डालते हैं, इनके लिए आखरत में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह ताला ना तो इनसे बातचीत करेगा और ना इनकी तरफ क़यामत के दिन देखेगा और ना इनको पाक करेगा, और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों में शामिल होने से बचा दे। यकीनन इनमें ऐसा गिरोह भी है जो किताब पढ़ते हुए अपनी जुबान मोड़ता है या अपनी जुबान मरोड़ता है ताकि तुम इसे किताब ही की इबारत ख्याल करो, हालांकि दरअसल वो किताब में से नहीं, और ये कहते भी हैं कि वो अल्लाह ताला की तरफ से है, हालांकि दरअसल वो अल्लाह ताला की तरफ से नहीं। वो तो जानते बूझते यानी दानिस्ता अल्लाह पर झूठ बोलते हैं। किसी ऐसे इंसान को जिसे अल्लाह ताला किताबो हिकमत और नबूवत दे, ये लायक नहीं कि फिर भी वो लोगों से कहे कि तुम अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ, बल्कि वो तो कहेगा तुम सब रब के हो जाओ। यही आपको मुझे इस बारे के एंड पे पैगाम दिया जा रहा है, कूनो रब्बानीश, और हम रब वाले बन जाएंगे तो हिदायत के रास्ते खुद बहुत खुलते जाएंगे। तुम्हारी किताब सिखाने के बायस और तुम्हारे किताब पढ़ने के सबब क्या तकाजा है कि तुम सब रब के हो जाओ, और ये नहीं हो सकता कि वो तुम्हें फरिश्तों और नबियों को रब बना लेने का हुक्म करे। क्या वो तुम्हारे मुसलमान होने के बाद भी तुम्हें कुफर का हुक्म देगा? ऐसा कभी नहीं होगा। और फिर अपारे का आखिर, आयत 81 से 91, टॉपिक लिखिए अंबिया कराम एक दीन के दाई। कैसे? वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबीयीन, जब अल्लाह ताला ने अंबिया कराम से वादा लिया। कैसे? जब अल्लाह ताला ने नबियों से अहद लिया कि जो कुछ मैं तुम्हें किताबो हिकमत दूं, फिर तुम्हारे पास वो रसूल आए जो तुम्हारे पास की चीज को सच बताए, तो तुम्हारे लिए इस पर ईमान लाना, इसकी मदद करना सब जरूरी है। फरमाया कि तुम इसके इकरारी हो और इस पर मेरा जिम्मा ले रहे हो। ये था वो अहद जो अंबिया कराम से लिया गया, एक अहद सारी इंसानियत से लिया गया, उसका तस्करा आगे सूरत अल-अराफ में आएगा। लेकिन ये वो अहद है जो हर नबी से लिया गया कि अल्लाह के नबी को अपना नबी मानोगे। सब ने कहा कि हमें इकरार है। फरमाया तुम अब गवाह रहो और खुद मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में हूँ। बस इसके बाद भी जो पलट जाएं वो यकीनन पूरे नाफरमान हैं। इस बात को समझने के लिए हदीस लीजिए सही बुखारी 15, तुम में से कोई शख्स ईमानदार न होगा जब तक इसके वालिद और इसकी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा इसके दिल में मेरी मोहब्बत न हो। अल्लाह हमें नबी की मोहब्बत दे दे। सवाल किया ऐसे लोगों से, क्या वो अल्लाह ताला के दीन के सिवा और दीन की तलाश में है? हालांकि तमाम आसमानों वाले और तमाम जमीन वाले अल्लाह ही के फरमा बरदार हैं, खुशी से हो या ना खुशी से, सब इसी की तरफ लौटाए जाएंगे। अल्लाह में खुशी से अपनी तरफ बुला ले, रोते बांधे भी करना है तो खुशी से कर लीजिए। اے نبی آپ کہہ دیجئے، ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کرام جو اللہ کی طرف سے دیے گئے تھے ان سب پر ایمان لائے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ آپ دیکھیں پارے کا شروع تل کر رسول سے اور پارے کا اختتام 15 انبیاء کرام کے تذکروں پہ ہے۔ تو کیا پتہ چلا آیت 84 سے سورۃ آل عمران کہ تفریق بین الانبیاء منع ہے، یعنی ایک کو ماننا اور دوسرے کو نہیں ماننا۔ ہاں تفضیل صحیح ہے کیونکہ تل کر رسول قد فضلنا میں آپ پارے کے شروع میں پڑھ چکے، تو یہاں سے آپ کو پارے کا شروع اور آخر بھی دکھا۔ کرو کیا اس پارے کو پڑھنے کے بعد سننے کے بعد؟ کیا ہے؟ اسلام اور اسلام، اور اس کے برعکس جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا؟ یا مسلمانوں کے لیے جملہ ہدایت سے کی طلب سے چور دل کے ساتھ اس آیت کو سنیے جاتے جاتے۔ کیا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں، یعنی عملی انکار ہو؟ اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔ بڑی درد ہے اس جملے میں۔ آپ دیکھیے فلو چارٹ 86 آیت کا، کئی فیاحد اللہ قومن کا فروبہ دئی مانیم، یہ امت مسلمہ کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے۔ ہمیں آپ کو ہدایت مل گئی، اب عمل نہ کر کر ہدایت سے دور کیوں جاتے ہو؟ تو ہدایت سے انحراف کی دو بڑی وجوہات ہیں، ضد اور ہٹ دھرمی اور دعوت حق کی مخالفت۔ اب ایسے لوگوں کو آخری جملوں میں کہا جا رہا ہے ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ انہیں مہلت دی جائے گی، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں پھر کفر میں بڑھ جائیں ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، یہی گمراہ لوگ ہیں۔ گمراہ کون ہوتا ہے؟ جو راہ کو گم کر دے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، ہاں جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر ہی رہیں، ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے گو فدیے میں ہی ہو تو بھی قبول ہرگز نہ کیا جائے گا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عائشہ سے روایت ہے، اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے تو اللہ سے معافی مانگو اور اس سے توبہ کرو، کیونکہ گناہ سے توبہ و ندامت اور استغفار ہے۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت 1341 ہے۔ آل عمران کی آیت 89 پر یہ آیت آ گئی، تو آپ کو مجھے بھی اس میں یہی پیغام ہے۔ پارہ پڑھ لیا، ہدایت کی طلب جاگی، کھڑے ہیں سیڑھی کے پاس، دل تو چاہ رہا ہے کہ چلو پہلا قدم تو اٹھاؤں۔ بسم اللہ کیجئے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، پریشان نہ ہو جائیں، اللہ کے تعلق کے ساتھ شروع ہوں، توحید کو لیجئے، اسلام کو اپنے لیے نعمت سمجھیے اور جتنا زیادہ دل سے پڑھ سکیں یہ دعا کر لیجئے کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے۔ یہی آج اس بارے کے اینڈ پہ ہماری بھی دعا ہونی چاہیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔